जयमा, सावित्री में दो तीन सुझाव आए जिसमें एक प्रमुख है द फाइंडिंग ऑफ द सोल, लेकिन ये कैंटो तो हम लोग पढ़ सकते हैं, किंतु यदि सावित्री संबंधित कुछ प्रश्न हो, क्योंकि बस आज और कल का दिन है, सावित्री संबंधित कुछ प्रश्न हो किसी पर्टिकुलर कैंटो के बारे में या किसी थीम के बारे में, क्योंकि सावित्री में बहुत सारी थीम है, प्रेम है, भाग्य है, मृत्यु है, भविष्य है, ईश्वर है, योग है, आत्मतत्व है, सारी थीम्स हैं इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड में जो इसमें नहीं है। तो सृष्टि के बारे में है, विकास क्रम की सारी स्टेजेस हैं, चेतना के अन्य स्तर, लोक, भुवन, सब कुछ है। तो कोई अगर प्रश्न है स्पेसिफिक तो हम लोग पहले उसको ले सकते हैं। ओके, नियति के बारे में इसको मैं सावित्री के एंगल से आई सी। तो डेस्टिनी के जो दो पोल पे एग्जिस्ट करती है, एक है जिसमें हम लोग जीते हैं, सतह पर जीते हैं, और हम चुनाव करते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम चुनाव करते हैं, और वो प्रतीति भी आवश्यक है, लेकिन उसके जो परिणाम है वो हमारे चुनाव और अपेक्षाओं के अनुरूप कोई जरूरी नहीं कि वैसे हों। पहले ऑब्जर्वेशन हमारा करेक्ट होना चाहिए, है ना, क्योंकि कभी कभी हमारे सोच के अनुरूप होते हैं लेकिन उसमें भी कोई चीज़ जैसे छूट जाती है, कोई चीज़ मिल जाती है लेकिन उससे जो हमने अपेक्षा की थी वो नहीं मिलता है, कई बार वो चीज़ नहीं मिलती है, ये भी होता है। तो हम डेस्टिनी को आमतौर पर केवल एक एफर्ट और रिजल्ट इसके रूप में देखते हैं, और वह भी हम उसको केवल एक बाहरी भूमि पर देखते हैं कि बाहर के इवेंट्स और सरकमस्टेंसेस, बाहर हमारी सिचुएशंस क्या डेवलप हो रही हैं। तो ये एक हमारा एक नॉर्मल व्यू है डेस्टिनी का, और स्वाभाविक है कि हम उसको नहीं समझ पाते, ये सबके मन में प्रश्न आता है कि ये है क्या। अब डेस्टिनी का एक इनर रूप भी है, और वो इनर रूप ऐसा है जिसमें हम बाहर की घटनाओं के द्वारा हमारे अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे किसी के जीवन में कठिनाई आती है, वो सिनिक बन जाता है, या उसके अंदर उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, उसके अंदर एक भाव डेवलप होता है कि नहीं किसी भी रूप में मैं इस नियति से लड़ूंगा, तो अंदर भी हमारे अंदर बहुत सा मोल्डिंग रिमोल्डिंग चल रहा होता है जो हम जनरली नहीं देखते हैं। तो ये जो एक पार्ट है जहाँ पे कुछ किया आपको मिला नहीं मिला, ये सब छूट जाता है, ये बहुत ही एक बाहर बाहर के सरफेस पर्सनालिटी का खेल है, लेकिन जो अंदर में डेवलप हो रहा होता है वो हमारे साथ कैरी करता है। और इसको हम एक उदाहरण के रूप में ले लें कि आपने कोई सिनेमा देखा, उस सिनेमा को देख करके बहुत सारे सीन्स आए, दृश्य आए, तो उसका एक उसमें आपके अंदर कभी भय आया, कभी खुशी आई, हंसी आई, कभी दुख हुआ, कभी उसकी थीम अच्छी लगी। जब ये सिनेमा ख़त्म हो जाता है तो क्या चीज़ हम कैरी करते हैं, उसका जो मूल अनुभव है ना, हम यही कहते हैं अरे वो बड़ा हॉरर फिल्म थी, या फिर ये कि अरे क्या कॉमेडी थी, या कितनी अच्छी सुंदर थीम थी। तो ये बाहर के घटनाक्रम के पीछे एक इनर डेस्टिनी चल रही है जिसको हम नहीं देख पाते, और इस इनर डेस्टिनी के पीछे तीन लेयर पे होती है एक और डेस्टिनी चल रही है कि इन अनुभवों से पोषित होकर हमारे एकदम अंदर में कोई ऐसा तत्व है जो ग्रो करता है। अब इसको इसी एनालॉजी को ले लें कि आपने देखा, एक हॉरर फिल्म देखी, खुद के ही बताओ, एग्जॉर्सिस्ट देखी, तो आपको फिल्म के सब कुछ चला गया, एक आध सीन याद रहा और एक हॉरर का भाव आया। अब ये देखिए कैसे ऑपरेट कर रहा है, कोई चीज़ इसको अपने अंदर सोख रही है, ले रही है। बाद में क्या होता है आपका इनर डेवलपमेंट, आपको हॉरर की चीज़ अगर आप देखते हो तो हंसी भी आती है, तो वो एक चेंज होती है चीज़ों के अंदर में, जो इसका हमारा आत्मतत्व है वो उसको और मॉडिफाई करता है, और इस प्रकार से वो आत्मतत्व कॉन्स्टेंटली ग्रो करता है। साइकिक बीइंग अपनी नित निरंतर यात्रा में है। तो अगर हम बाहर से डेस्टिनी को केवल पकड़ें बिल्कुल जो उसका आउटर रूप है, तो वहाँ पर एक ऐसा भाव होता है कि ना जाने कौन हमको कंट्रोल करता है हमारे भाग्य को, चाहते कुछ और हैं होता कुछ और है, या कोई चीज़ मिल भी जाती है जो हम चाहते थे तो भी ऐसा लगता है कि जो हम उससे चाहते थे वह नहीं मिली। तो ये कॉन्स्टेंट बाहर हमको लगती है फ्रीडम, लेकिन हम वास्तव में दास होते हैं। और अगर इसी डेस्टिनी के अपने उच्चतम रूप में जाए जहाँ आत्म तत्व, तो वहाँ पर हम कुछ और डिस्कवर करते हैं। ये डिस्कवर करते हैं कि वास्तव में अगर कोई फ्रीडम है सच में तो वो आत्म तत्व के पास है, क्योंकि वो ठीक जानता है कि डिवाइन क्या चाहता है। तो हमारी सोल क्या करती है कि वो वैसे परिस्थितियाँ चुनाव करती है। अब देखिए बाहर से लग रहा है हम दास हैं, लेकिन अगर अंदर के सत्य को देखें तो वो ऐसी परिस्थितियों का चुनाव करती है जिसके द्वारा उसके अंदर जो भगवान का संकल्प कहीं ना कहीं किसी रूप में विद्यमान है वो रोड अपने आप पकड़ती हुई चली जाएगी। तो ये दो पोल हैं जिसमें हमको देखना है, और इसके साथ ही इन सब के पीछे कौन है, इन सब के पीछे डिवाइन कॉन्शियसनेस, सोल उससे जुड़ी है इसलिए वो इस खेल को समझ पाती है, और हमारी सरफेस पर्सनैलिटी इससे जुड़ी नहीं है। जब तक वो इंटीग्रेट नहीं होती वो कभी नहीं समझ पाती कि मेरे साथ जीवन में क्या हो रहा है। अब डेस्टिनी से जुड़े कुछ प्रश्न उठते हैं कि ये जो घटनाएं होती हैं जीवन में ये क्या केवल दंड और पुरस्कार है? श्री अरविंद कहते नहीं, ये केवल और केवल विकास की अवस्थाएं हैं, विकास की प्रक्रिया है। हमें दंड या पुरस्कार लगती हैं क्योंकि हम अज्ञान में उसको वैसे देखते हैं। एक बच्चे को जब एक टीचर कहती है कि तुमसे ये ठीक से लिखा नहीं गया, 10 बार तुम इसको लिखो, अब बच्चा ये देख सकता है कि ये दंड है, लेकिन वास्तव में बच्चे की अगर उसको सही ढंग से मूल्यांकन करे तो उसकी उसके जीवन में परफेक्शन लाने का ये चरण है। तो हम कैसे उसको देखते हैं, हमें बाहर से लगता है यह दंड या पुरस्कार है, परंतु वास्तव में भाग्य का ये विधान नहीं है। भाग्य का विधान तो कांस्टेंट चेंज और प्रोग्रेस का है। तीसरा एक और ये जो हम लोग जीवन में देखते हैं, रैंडम घटनाएं होती हैं। तो ये रैंडम घटनाएं होती हैं जो ना आपने चाहा था ना सोचा था, और अचानक वो हो जाती हैं जो आपके फॉर्मेट में नहीं था। तो ये क्यों होती हैं? क्या इसके तार कहीं जुड़े होते हैं हमारी डेस्टिनी से? निश्चित रूप से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? बहुत सारी चीज़ें हमारे अवचेतन मन में, हमारे डिजायर सेल्फ में दबी होती हैं, तो उसका अनुभव हमको नहीं होता है और हम नहीं जानते कि इसके अनुभव में क्या है। तो सोल तो फाइनाइट है लेकिन वो अनंत का अनुभव लेने आई है, तो वे चीज़ें कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में प्रकट होती हैं और फिर उनका हम एसेंस अनुभव लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए ये सीमिंग रैंडम प्ले में कुछ भी रैंडम नहीं है, ये हमको लगता है कि ये रैंडम है। और इसीलिए एक जगह बहुत सुंदर लाइन है जहाँ देर इज़ ए मीनिंग इन ईच स्टम्बल एंड फॉल। तो वो स्टम्बल एंड फॉल कैसे लगता है आपको? बाहर से लग रहा है, लेकिन वो आवश्यक था आपको कुछ सीखना। और संसार उसको जैसे भी देखे, यहाँ तक श्री अरविंद देखते हैं कि वर्ल्ड में सी इट एज गुड और बैड, गुड और ईविल, लेकिन जो इटर्नल विल है वो हमेशा गुड के ही लिए कार्य करती है, शुभ के लिए। जो हम सो वी कैन नेवर अंडरस्टैंड डेस्टिनी फ्रॉम आउटसाइड। अब इसका एक हम पैसेज, क्योंकि इसमें बहुत जगह डेस्टिनी के ऊपर दिया गया है, ये वर्ड ऑफ फेट है, नहीं द वे ऑफ फेट एंड द प्रॉब्लम ऑफ पेन, सो वील कम टू दैट कैंटो। सो प्रॉब्ली बेटर है कि मैं कीवर्ड्स बोलूं और उसको ढूंढ लिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंटो है। तो एनीवेज आई हैव ऑलमोस्ट रीच्ड। सो एक पैसेज जस्ट टू, उसमें सारी लगभग एसेंस आ जाता है। इफ यू वांट टू सर्च फॉर इट, ओ किंग द इवेंट्स दैट मीट दी ऑन द रोड, the events that meet thee on the road, Though they smite thy soul and body, body and soul, with grief and pain, are not thy fate. They touch thee a while. अब देखिए ये तब तक मैं ये पंक्तियाँ कुछ पढ़ रहा हूँ. डेस्टिनी कैसे ऑपरेट करती है और क्यों हम नहीं समझ पाते. नारद अशुपति को कह रहे हैं. बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है. बैकग्राउंड ये कि सावित्री जैसी सुलक्षणा सर्वगुण संपन्न, उनके जीवन में ऐसा क्यों होने वाला है कि उनके पति की अकाल मृत्यु होने वाली है. तो नारद कहते हैं, ओ अश्वपति, रैंडम सीम्स द वेज अलोंग हुज बैंक्स योर फुटस्टेप्स स्ट्रे और रन इन कैजुअल आवर्स और मोमेंट ऑफ द गॉड्स, येट योर लीस्ट स्टम्बलिंग्स आर फोरसीन अबव. अब इसको दो तरह से हम ले सकते हैं कि भगवान चाहते थे तो ये सही है. यहां सही गलत की बात नहीं हो रही है. भगवान का ऑपरेटिंग सिस्टम में ये राइट और रॉन्ग नहीं है. वो एक अनुभव है जो आपके लिए आवश्यक है आपकी ग्रोथ के लिए. दैट्स ऑल इट मींस. इनफॉलिबली द कर्व्स ऑफ लाइफ आर ड्रॉन फॉलोइंग द स्ट्रीम ऑफ टाइम थ्रू द अननोन. दे आर लेड बाय ए क्लू द काम इमॉर्टल्स की. काम इमॉर्टल्स कौन है? देवता. वो आपके ही वो जानते हैं कि आपको कहाँ पहुंचना है और उनका जीपीएस आपको अपने ढंग से वो ले जाता है. अप्रत्याशित घटनाएं होंगी, ऐसी चीजें, कुछ आप चुनोगे, आपको लगेगा कि मैंने ये चुना है पथ तो इसमें ये होने वाला है, किंतु नई चीजें होंगी. दे आर लेड बाय ए क्लू द काम इमॉर्टल्स की दिस ब्लेजोन्ड हायरोग्लिफ ऑफ प्रॉफिट मॉन्स ए मीनिंग मोर सबलाइम इन सिंबल्स राइट्स देन सील्ड थॉट वेक्स टू. But of this high script, how shall my voice convince the mind of earth? अब यहाँ नारद कहना चाह रहे हैं पर रोक रहे हैं. कहते मैं क्या समझाऊं, बस आप समझ लो कि कोई है सोई राम रचि राखा. वो कहते लेकिन जीवन को देखो तो अटपटा सा लगता है. तब उसमें आगे लिख रहे हैं बहुत अद्भुत बात कि भगवान और देवता जो डेस्टिनी के हैं वो कैसे इसको बनाते हैं, कैसे हमारे स्क्रिप्ट को लिखते हैं. मतलब वो कॉस्ट्यूम अरेंज करते हैं और सीन क्रिएट करते हैं, सर्कमस्टांस, और आप अचानक उसमें अपने आप को पाते हो टू प्ले अ रोल ऑफ विच यू हैव नो क्लू. वो कभी कभी किसी फिल्मों में आता है ना कि किसी व्यक्ति को ढकेल दिया, ये गाएगा. आई है कुछ एक फिल्मों में, मैं भूल रहा हूँ. तो वहाँ पर जाकर के वो कहता है मैं कहाँ से बाई चांस वहाँ पर आ गया है, और फिर वो नज़ारा कुछ और होता है. हेवेंस वाइजर लव रिजेक्ट्स द मॉर्टल्स प्रेयर. Unblinded by the breath of his desire, unclouded by the mists of fear and hope, it bends over the strife of love with death. It keeps for her her privilege of pain. ये देखिए. तो ये मार्ग में जो कुछ आता है, pleasure, pain, ये हमारे mind के evaluation है. पर truth इसमें नहीं है, छिपा है. ट्रूथ छिपा है, वो उसकी क्लू कहीं और मिलती है. अब उसकी बात यहां पर श्री अरविंद कर रहे हैं. फेट इज ट्रूथ वर्किंग आउट इन इग्नोरेंस. आपको कहां पहुंचना है ये लिख दिया गया है, कैसे पहुंचना है लिख दिया गया है, लेकिन हमें पता नहीं है, हम इग्नोरेंट हैं. तो हमारी चॉइसेस भी इस तरह से ड्राइव होती है. हमको लगता है हमारी फ्री चॉइस है. और ये कई लोग कहते हैं अच्छा हमारी कोई फ्री चॉइस नहीं है, ठीक है जो भगवान चाहे कर लें. आप ट्राई करके देख लो, जस्ट डू इट फॉर 5 मिनट्स. और यही चीज श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं. तो अभी कह रहा है कि तू युद्ध नहीं लड़ेगा, ठीक है, अभी थोड़ी देर में तू उठेगा, तुझे क्रोध आएगा और तू युद्ध में कूदेगा, क्योंकि ये नियत है, ये नियत है कि ही हैज टू फाइट द वार एंड ही हैज टू विन इट. आप नहीं उससे अलग हो सकते हो, ये डेस्टिनी. तो कई लोग कहते हैं अच्छा हमारी फ्री विल नहीं है तो हम जो चाहे मर्जी करें, करके देख लीजिए. आप कितना भी भाग्य में बता दीजिए कि बुरा करने से तुम्हें रौरव नरक में भूनते हैं, लेकिन जिसको बुरा करना है ना, ये सारे अब देखिए इस्लामिक वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इतने कठोर कठोर दंड हैं पर करते हैं वही कृत्य, वो भी भगवान के नाम पर। अब वहीं पर किसी को आप ऑनेस्ट व्यक्ति को आप बता दीजिए कि अरे इससे तुझे कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी उसकी प्रकृति उसको वही चॉइसेस पर ले जाएगी। तो ये एक चीज हमको समझनी, ये नहीं कि हम चॉइस ना करें, चॉइस ना करना भी चॉइस है, और उसके पीछे भी देर आर फोर्सेज विच आर मूविंग अस। और इसका मतलब ये कि इस दासत्व से यदि हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमको अपने आत्म तत्व को जानना होगा और डिवाइन को जानना होगा, अदरवाइज वी कैनॉट, वी विल ऑलवेज रिमेन इट्स स्लेव। फेट इज ट्रूथ वर्किंग आउट इन इग्नोरेंस, ओ किंग दाई फेट इज ए ट्रांजेक्शन डन एट एवरी आर बिटवीन नेचर एंड दाई सोल। अब देखिए आपके अंदर एक बहुत प्रबल एस्पिरेशन जागी, एस्पिरेशन कैन बी फॉर आइडियल लव, एनीथिंग विच इज ट्रूली डिवाइन, एस्पिरेशन कैन बी टू हैव अ टेस्ट ऑफ दैट ब्लिस, एस्पिरेशन कैन बी फॉर गॉड हिमसेल्फ, एस्पिरेशन कैन बी फॉर इमोर्टैलिटी, एस्पिरेशन कैन बी फॉर परफेक्ट पावर, एनीथिंग यू आर एस्पायरिंग, पर आपकी प्रकृति तैयार नहीं है। तो आपने प्रकृति को कहा ये मेरी एस्पिरेशन है, ट्रांजेक्शन क्या हुआ, आपने उसमें डिपॉजिट कर दिया लेकिन प्रकृति रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। सो व्हाट हैपेंस देन, ओ किंग दाई फेट इज ए ट्रांजेक्शन डन एट एवरी आर बिटवीन नेचर एंड दाई सोल विद गॉड फॉर इट्स फोर्सिंग आर्बिटर। लेकिन किसी ने उसको नोट किया है, फेट इज ए बैलेंस ड्रॉन इन डेस्टिनीज बुक, मैन कैन एक्सेप्ट हिज फेट, ही कैन रिफ्यूज। अभी आएगा वो क्वेश्चन जो मन में है वो आता है यहाँ, अभी नेक्स्ट लाइन में आएगा कि रिफ्यूज मतलब अगर हम बीमार हैं हम रिफ्यूज कर दें, हम नहीं मरना चाहते तो क्या हम नहीं मरेंगे? अगर हमारे जीवन में एक प्रबल अंदर में एक एस्पिरेशन है और वो चीज़ बाहर फुलफिल होती नहीं दिख रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैन कैन रिफ्यूज हिज फेट। अब यहाँ देखो श्री अरविंद कह रहे हैं, मैन कैन एक्सेप्ट हिज फेट, ही कैन रिफ्यूज इवन इफ द वन मेंटेन्स द अनसीन डिक्री। हो सकता है कि वो ना हो जिसकी आपके अंदर प्रबल एस्पिरेशन है, ही राइट्स thy रिफ्यूजल इन thy क्रेडिट पेज। भगवान के वहां खाता खुला हुआ है आपका कि इसने इसकी प्रबल अभिप्सा की थी और उसमें हम चीट नहीं कर सकते। वो ऐसे नहीं कि हमारी एक विश चल रही है डिजायर, वो सभी नोटेड है कि ये विश थी, डिजायर थी, जेन्युइन एस्पिरेशन थी, क्या थी, ये सब वहां पे आप मतलब यू कांट फूल द डिवाइन। अपने को हम फूल कर सकते हैं बट वी कैनॉट फूल द डिवाइन। फॉर डूम इज नॉट ए क्लोज ए मिस्टिक सील, एरिजन फ्रॉम द ट्रेजिक क्रैश ऑफ लाइफ, एरिजन फ्रॉम द बॉडीज टॉर्चर एंड डेथ, द स्पिरिट rises mightier by defeat, its godlike wings grow wider with each fall, its splendid failures sum to victory। बार बार गिर के डेस्टिनी आपको उठाएगी, ले जाएगी वहां जहां आपकी नियति है। तो ये कौन निर्धारित करता है, आप यहां को भी कह रहे हैं। ओ मैन द इवेंट्स दैट मीट दी ऑन thy रोड, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, दो दे स्माइट दाई बॉडी एंड सोल विद जॉय एंड ग्रीव, आर नॉट दाई फेट, दे टच दी ए वाइल एंड पास। ये हम अगर इंट्रोस्पेक्ट करें अपने जीवन में, हम सब आई थिंक कुछ होंगे जो 30 नहीं टच किया होगा, 25 के ऊपर तो सब है ना, जो 25 के ऊपर है हाथ उठाएं। हाँ थैंक यू। एक ही सच्चाई से। सो अब देखिए ये, अब जीवन के पीछे अगर हम देखें तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं सबके जीवन में, वे जिनको हम अच्छी बोल सकते हैं, जिनको हम बुरी बोल सकते हैं, जिनके कारण हम बहुत रोए और जिनके कारण हम खुश हुए, कहाँ चली गई, चली गई है ना, शेष क्या बचा, वन डिवाइडेड बाई जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी. शेष क्या बचा? अब अपने जीवन को केवल इस क्षण तक देख लें. ये सारी घटनाएं हुई, अच्छी बुरी, जो सुख दुख, इस समय आप कहाँ खड़े हैं? क्या उनका कोई रोल था हमको यहां तक लाने में? अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तब ये बात समझ आती है कि हाउ वी आर बीइंग लेड एंड कैरीड. तो यहां पर इस बात का की पुष्टि कर रहे हैं, इवन डेथ कैन कट नॉट शॉर्ट दाई स्पिरिट्स वॉक, दाई गोल द रोड दाउ चूजेस्ट आर दाई फेट. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब कई लोगों को पता नहीं होता उनका गोल क्या है, लेकिन ये सब केवल सरफेस पर्सनालिटी की बात है. कहने का मतलब ये कि हम सरफेस पर्सनालिटी में है तो हमको पता नहीं है हमारा क्या गोल है, लेकिन अंदर में वो आपके लिए फिक्स है और वो उसके द्वार से लेके पहुंचाएगा. जगह जगह पर वो लाइन आती है, वन हु हैज मेड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड, आवर एरर्स आर हिज स्टेप्स अपॉन द वे, ही वर्क्स थ्रू द फियर्स विसिसिट्यूड्स ऑफ अवर लाइफ्स, ही वर्क्स थ्रू द हार्ड ब्रेथ ऑफ बैटल एंड टॉयल, ही वर्क्स थ्रू अवर सिंस अवर सॉरोज एंड अवर टीयर्स, वट एवर द अपियरेंस वी मस्ट बेयर. तो मुख्य रूप से अब इसके मूल में अगर जाएं, तो क्या हम सबकी डेस्टिनी है? अल्टीमेटली अगर देखें, हम सबकी डेस्टिनी तो वही है, टू बिकम डिवाइन एंड एक्सप्रेस समथिंग ऑफ हिम. अब बिकम डिवाइन से हम लोग सोचते हैं नेबुलस, हम सब पता नहीं क्या हो जाएगा, एक डिवाइन हो जाएंगे डिवाइन का. लेकिन एज एन इंडिविजुअल हम सब भगवान के किसी एक एस्पेक्ट को एक्सप्रेस करेंगे इन द सुप्रामेंटल क्रिएशन. अभी मैं वहीं तक की बात कर रहा हूं. तो अब वो जीवन में जन्मों से ये सारी चीजें जो आएंगी, कोई ब्यूटी को रिप्रेजेंट करेगा, कोई ज्ञान को रिप्रेजेंट करेगा, ज्ञान में भी अनेकों प्रकार के हैं, कोई कई प्रकार के प्रेम है उसको रिप्रेजेंट करेगा एस्पेक्ट्स को, कोई शक्ति को रिप्रेजेंट करेगा. तो उसके जीवन में जो घटनाएं आएंगी, जो उसके सुख दुख आएंगे, वास्तव में उसको मोल्ड कर रहे हैं वहां तक ले जाने के लिए. फिर जब वो कॉन्शियस हो जाता है तो क्या होता है, वो जान जाता है हाँ हाँ यही मेरा गोल है और कुछ नहीं. बाहर से आपको लगता है कि नहीं, आई डोंट नो माई गोल, डजंट मैटर, देर इज समथिंग और समवन विद इन विच नोज द गोल. गोल क्या, उसको मतलब उसके सॉफ्टवेयर में डला हुआ है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते. तो मुख्य चीज यही है डेस्टिनी का, एंड इट्स ए गुड न्यूज एक्चुअली कि हम सब के लिए एट द एंड ऑफ द लॉन्ग जर्नी समथिंग हैज बीन ब्यूटिफुल हैज बीन डिसाइडेड फॉर अस. और वो ठीक जैसे आप आश्रम में ये होता है कि जो कुछ एक इवेंट्स होते हैं जहाँ सब लोग लाइन में लगते हैं, तो लाइन में लगते हैं तो किसी किसी का लकी डिप निकलता है. मैं एक ही बार लगा हूँ, मुझे लकी डिप निकला था माँ का चित्र लेकिन किसी का नहीं निकला लकी ड्रॉ, तो भी सबको कुछ कुछ गिफ्ट मिलता है. एवरीबॉडी गेट्स ए प्राइज एंड यू कम बैक हैप्पी. तो उसी प्रकार से हम सबका एक अल्टीमेट कुछ है जो डिसाइडेड है, और हम उसको डिस्कवर कर रहे हैं या वी आर बीइंग लेड टू डिस्कवर इट. बस इतना ही है और कुछ नहीं है डेस्टिनी का. बाहर से कौन सी घटनाएं होंगी, वे होंगी जो हमको उस तरफ और धकेलेंगी, नॉट नेसेसरली थ्रू द स्ट्रेट पाथ, क्योंकि स्ट्रेट पाथ की अपनी समस्याएं हैं. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग सोचते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई क्योंकि यदि मुझे अंत में बैठ के मेडिटेशन करना था तो पढ़ाई इसलिए की क्योंकि आपके माइंड का इतना विकास हुआ, आपने सीमाओं को जाना, तो सीमा की परे जाने के आपके अंदर अभीपसा आई. कोई और है जो अभी उस स्टेज में नहीं है. तो अलग अलग स्टेजेस में लोग हैं, उस हिसाब से डेस्टिनी ऑपरेट करती है. इज दैट ओके और समथिंग एल्स स्पेसिफिक यू हैव इन माइंड? चलेगा अभी इतना? हाँ यस. हाँ, पूरी सावित्री तो ये है. वो जो मतलब है कि इसके दो डायमेंशन है. अब यू आर टेकिंग इट टू अनदर लेवल कि एक है फेट आपका जो इग्नोरेंस में ऑपरेट करता है, और एक है फेट जो आपका हायर ट्रूथ में ऑपरेट करता है. तो आमतौर पर डेस्टिनी की एक सीमा है आप इसको ऐसे लिखो कि तीन लेवल पर ये खेल हो रहा है, पर मुख्य रूप से दो लेवल पर, दो, एक इग्नोरेंस के अंदर, इग्नोरेंस के अंदर आपकी डेस्टिनी की एक सीमा है और कुछ है जो इग्नोरेंस के परे है, एक संभावना है, वो संभावना संसार में यदि अभिव्यक्त नहीं हुई है तो आप उस संभावना को कोई नहीं प्राप्त कर सकता, नोबडी कैन अराइव एट इट। तो सावित्री क्या मतलब, क्योंकि आपका जो नियम ऑपरेटिंग सिस्टम बना है वो इस तरह से बना है जो अभी जितनी इवोल्यूशन है उसके लिए पर्याप्त है, अब उस इवोल्यूशन के आगे की जो चीज है वो प्रकट नहीं हुई है। सो देर इज द लॉ एंड देर इज समथिंग बियॉन्ड द लॉ, जिसको आप अगर साधारण एग्जाम्पल में देखें तो नियम कानून हैं बहुत सारे, तो आप अगर भारत में या किसी राष्ट्र में रहते हैं तो उन नियमों के अधीन ही आप कार्य कर सकते हो। यदि आप किसी को भी बोलोगे कि मुझे तो वो चीज़ चाहिए जो आपके नियम अलाउ नहीं करता है, तो वो क्या कहेगा, भैया ये तो नियम नहीं अलाउ करता है, इवन प्राइम मिनिस्टर को नहीं अलाउ करता है। मैं यहाँ वो नहीं कह रहा हूँ कि लोग बाय द वे कर देते हैं साइड से, वो एक व्यक्ति को कर दिया, लेकिन जनरल नियम वो नहीं अलाउ करेगा। तो अगर वो चीज होनी है तो क्या किया जाएगा, नियम को बदलना पड़ेगा। तो सावित्री तो एक साधारण फेट को चेंज नहीं करने आई है, सावित्री तो इस धरती के अंदर जो भाग्य की सीमा है उसी को बदलने आई है, उसी को चेंज करने आई है, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अज्ञान के अंदर जो फोर्सेस का ऑपरेटिंग प्ले है वो, देयर इज अ रीजन व्हाई दे ऑपरेट लाइक दैट, बट सावित्री हैज कम टू चेंज दैट कंप्लीटली। माँ बार बार कहती हैं कि इसको हम लोग कैंटो 2 से पढ़ लेंगे, बुक 1 कैंटो 2 वो लास्ट पेज है उसका, तो उसको माँ कहती हैं बार बार कि आई हैव कम टू चेंज द लॉ। सो ये जो चेंज करने वाली लॉ होती है वो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, ही इज क्रस्ट अंडर द व्हील। पर कुछ होते हैं जिनके अंदर ये नई चीज मैनिफेस्ट करने की, नई संभावना मैनिफेस्ट करने की एक पॉसिबिलिटी दी जाती है, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ, कुछ विभूतियां आईं, उन्होंने एक पूरा सोच बदल दी। तो अगर आप इसको हायर सेंस में देखोगे तो ये भी डिसाइडेड है, ये भी डिसाइडेड है कि काल के खंड में ये चीजें बदलेंगी, तो अगर उस सेंस में इट इज ऑल डिसाइडेड, पर उसको बदलने के लिए somebody has to come and take the initiative। सो सावित्री वह अवतार हैं जो इसको बदलने आई हैं। तो अब उसमें आपको I'll read out this passage। एक जो ordinary चेतना में क्या होता है और somebody जो आता है specifically इसको बदलने के लिए। Writing a work she had to do, a word to speak, writing the unfinished story of her soul। तो ये भी है कि सावित्री की अपनी प्रारंभ से कहानी जो बदलने के लिए एक समय पर उनके अंदर जो पूरा ये डिवाइन ने जो डेस्टिनी में डाला है, she has to fulfill that। तो देख will come a time when the divine mother will incarnate in her। In thoughts and actions graved in nature's book, she accepted not to close the luminous page, cancel her commerce with eternity or set a signature of weak assent to the brute balance of the world's exchange, a force in her that toiled since earth was made। अब आप इसको ऐसे देखो कि राम राज परिकल्पना है ना, अभी भी वास्तव में अगर आप इम्पर्सनली देखो तो श्री राम के समय भी नहीं है राम राज, हालांकि पीपल ट्राइड एंड सब कुछ, अगर आप इफ यू सी वेरी इम्पार्शली इवन इन द टाइम ऑफ श्री राम, राम राज इज नॉट एस्टैब्लिश, बट राम राज होगा ये भाव की एक संभावना है आइडियल जगत की, ये उस समय एस्टैब्लिश हो जाती है। करते 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 अभी भी वो कार्य चल रहा है, स्टिल ए वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें कई लोग आएंगे, श्री राम के आने के पहले ये संभावना भी नहीं है। तो ही ओपन्स द डोर टू अ न्यू पॉसिबिलिटी। तो अब यहां सावित्री का आगे, repugnant to admit frustrations, a force in her that toiled since earth was made, accomplishing in life the great world plan, pursuing after death immortal aims, repugnant to admit frustrations barren role, forfeit the meaning of her birth in time, obey the government of the casual fact or yield her high destiny up to passing chance. In her own self, she found her high recourse. She matched with the iron law her sovereign right. Ye sari Savitri mein yehi hai. Death represents the iron law. वो कहता है ये नहीं हो सकता है, बाकी सब हो सकता है. जैसे अभी क्या है कि मानव से परे रूपांतरण एक सुपरमेंटल बीइंग, ये नहीं हो सकता है. मैन इज द हाईएस्ट, यही डेस्टिनी. आप अगर किसी को बोलोगे कि मैं माँ के आने के पहले कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरी देह एकदम स्वर्णिम ज्योति से जगमगाने लगे, रोग समाप्त हो जाएं और मृत्यु ना हो, तो पीपल विल लाफ एट यू. पर वो भाव भी आप तुम्हारे अंदर अगर आया है एक क्षण भी किसी जीवन में, तो आप मार्क्ड आउट हो गया हो. जो हमने पढ़ा ना कि इवन इफ ही राइट्स योर फेलियर, मतलब डूम, बट स्टिल आपके क्रेडिट पेज में वो एफर्ट किया है, कहीं पर कहीं किसी उसमें यू फेल्ट और एनी ऑफ अस फेल्ट, मे बी वन लाइफ टू लाइफ सून ओज वेन, कि चीज़ें बदलनी चाहिए, मनुष्य के परे कुछ तो होना चाहिए. तो वो सारी चीजें मार्क्ड हैं. जब उसका समय आएगा तो ऑल दीज आर कॉल्ड. यही माने अपने उसमें भी कहा है कि वी हैव ऑल मेट इन प्रीवियस लाइव्स एंड वी हैव लेबर्ड फॉर द विक्ट्री, वी हैव लेबर्ड फॉर द विक्ट्री एंड वील शेयर द जॉय ऑफ इट. आई नो, मैं बचपन में मेरे अंदर ये आता था कि सुपरमैन हैज टू कम. I had not read about Mother and Shurbindo, पर मुझे ये अटपटा लगता था कि ये ह्यूमन से बंद कैसे हो सकती हैं चीजें, ये तो बड़ा अजीब है, ये स्टोरी कैसे समाप्त हो गई. तो ऐसे जब भी कभी कभी अलग अलग रूप से मैं एक एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये भाव उठे हैं, लेकिन वो समय नहीं आया था उसको एक्टिवेट करने का. अब माँ कौन है, सावित्री कौन है, सावित्री उस नई संभावना को जन्म देने के लिए आई है, और वो संभावना जब जन्म ले लेगी, धरती स्वीकार कर लेगी, मृत्यु स्वीकार कर लेगी, मतलब उसके पास अब कोई चॉइस नहीं है, तो वो अब एक जनरल पॉसिबिलिटी के रूप में एक्सेप्ट हो जाएगी. हर सिंगल विल अपोज द कॉस्मिक रूल टू स्टे द व्हील्स ऑफ डूम. दिस ग्रेटनेस रोज एट द अनसीन नॉक अपॉन हर हिडन गेट्स. हर स्ट्रेंथ मेड ग्रेटर बाय द लाइटनिंग्स टच अवोक फ्रॉम स्लंबर इन हर हार्ट्स रिसेस. It bore the stroke of that which kills and slays. She faced the engines of the universe. A heart stood in the way of the driving wheels. तो अब ये जो यहाँ पर destiny change करने की सावित्री बात कर रही है, वो ये नहीं है कि भाई सत्यवान वापस आ गया so that I can enjoy my life forever. Death उसको यही कहता है कि ये permitted नहीं है कि वो वापस आए. You will forget him, ये संभव है. And you will find somebody else. कोई और तुमको मिल जाएगा, ये संभव है. लेकिन सत्यवान वापस आ जाए, ये कोई विधाता नहीं है, लिखा ही नहीं है किसी के लिए, तो तुम्हें कैसे मिल सकता है. और फिर वो बताता है कि ये प्यार जो तुम्हारा है मैंने बहुत देखा है. आप किस प्यार की बात कर रहा है? तो सावित्री उत्तर देती है, माई लव इज नॉट ए हंगर ऑफ द हार्ट, माई लव इज नॉट ए हंगर ऑफ द फ्लैश. तो पहले कहती हैं, तो ये जो हम कहते हैं ना चेंज डेस्टिनी, तो उसका अर्थ ये नहीं होता अरे मेरे मन में है कि कोई मेरा हो जाए तो मैं कैसे भी हो जाएगा. इट डजेंट वर्क लाइक दैट. तो ये कैसे ये ऑपरेट कर रही है सावित्री के केस में, कि शी इज ओपनिंग ए न्यू पॉसिबिलिटी, कि सत्यवान मस्ट नॉट डाई बिकॉज साथ में उन दोनों को एक महत् कार्य करना है. तो जब एक बार एक सत्यवान वापस आ जाता है इस तरह का, तो ये उस तरह के सत्यवानों के लिए, ये नहीं किसी के भी लिए कैसे भी, क्योंकि ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम चलेंगे. एक है जिसमें अज्ञान में हो, अज्ञान में जब आदमी जी रहा है तो ऑटोमेटिकली ये नहीं अप्लाई कर रहा है, वो धीरे धीरे चेंज करेगा. लेकिन कुछ हैं जो तैयार हो गए हैं फॉर द हायर लॉ टू टेक ओवर द लोअर लॉ. सो सावित्री आई हैं जो उस समय के नियम हैं सृष्टि में उसको बदलने के लिए. एक बार वो बदल देती हैं तो वो संसार में सबके लिए लागू होता है. तो वो केवल अपना व्यक्तिगत भाग्य बदलने नहीं आई हैं, वो बदलने आई हैं संसार का भाग्य. वेयर लव मस्ट डाई एंड सफर, दैट्स हाउ शी इज कम टू चेंज एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सावित्री. वो खुद, हाँ बोलिए. रीबर्थ की प्रोसेस. हाँ हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है. सनातन धर्म ने तो वैसे भी मृत्यु को अंत नहीं देखा है, रीबर्थ के रूप में देखा है. लेकिन अंत में उस रीबर्थ का अंत कहां होता है? ह्यूमन फॉर्म एंड मुक्ति, ये है ना. तो उसमें जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है सनातन धर्म में, वो सोल की इवोल्यूशन है. वही है इग्नोरेंस का ऑपरेटिंग सिस्टम. अज्ञान में आप बॉडीज पे बॉडीज लेते जा रहे हो, जो भी 84 लाख योनियां जो भी कह लो. एक टाइम आता है जब एक बॉडी में आपकी सोल इतनी कॉन्शियस हो गई है कि वो कहती है कि इंस्टेड ऑफ ध्यात्म बोध कि ये मैं हूं, वो मुड़ने लगती है कि नहीं मैं तो कुछ और हूं, और तब वो उससे आत्मसात होकर चली जाती है. तो अंत में बॉडी की और बॉडी से कनेक्टेड फिजिकल लाइफ की, फिजिकल अर्थ की डेस्टिनी इज द सेम. इंडिविजुअल की डेस्टिनी भी अधिक से अधिक सनातन धर्म में इज रिलीज फ्रॉम दी मृत्यु से, और इवन भाग्य के पास से व्यक्ति की मुक्ति है. तो जब चेंज द लॉ की बात होती है, तो चेंज द लॉ हो रही है अर्थ के लिए एक नई चीज, यानी अर्थ पे मृत्यु रहेगी, इसीलिए इसको मर्त्यलोक कहा गया अब तक जो हुआ है. लेकिन अर्थ के पार आप जा सकते हो और आप मृत्यु से मुक्त हो जाओगे. तो उसमें अनेकों प्रकार की मुक्ति है कि भाई मैं किसी लोक में निवास करूंगा अपने अपने लॉर्ड के साथ, डिवोटी कहता है, या वेदांत इन कहता है कि आई विल मर्ज इन टू द डिवाइन. तो इस प्रकार की मुक्ति पॉसिबल है. लेकिन इस धरती पर रहते हुए मुक्ति, जहां पे आपको फिजिकल बॉडी में है लेकिन आप कंप्लीटली फ्रीड हैं, चेन ऑफ कर्म से भी फ्रीड हैं, आपके ऊपर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं, यू आर जीवन मुक्त, इसको पहली बार श्री कृष्ण उसको पूरे सुंदर ढंग से प्रकट करते हैं धरती के ऊपर, कि यह संभव है कि आप धरती पर रहते हुए भी पूरी तरह यू आर इनवर्डली फ्री. लेकिन अब इनवर्डली फ्री हैं, बट यू आर स्टिल, बॉडी इज सब्जेक्ट टू डेथ, नॉट द सोल बट द बॉडी इज सब्जेक्ट टू डेथ. तो यहां सत्यवान की जो बात हो रही है वो केवल ये नहीं है कि सत्यवान तो शी कैन गो अलॉन्ग विद हिम. सावित्री को ये ऑफर मिलता है, सावित्री को ऑफर मिलता है कि तुम दोनों चाहो तो अनंत काल तक या काल के परे अनंतता में बाउंडलेस प्रकार से प्रेम के समुद्र में एक दूसरे से ज्वाइन करते हुए निवास कर सकते हो. ये उनको ऑप्शन मिलता है. पर सावित्री कहती है कि आई डोंट एक्सेप्ट दिस लोनली फ्रीडम, मैं इस संसार की नियम को बदलना चाहती हूँ. तो वहां पर अब अल्टीमेटली जो चीज आती है कि बॉडी की डेस्टिनी से इसको क्यों लिंक किया है श्री अरविंद ने, क्योंकि बॉडी डेस्टिनी का ऐसा गढ़ है जिसको बदला नहीं किया. मतलब कुछ एक एग्जाम्पल आते हैं, वो चेंज ऑफ लॉ नहीं है, इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने अपने शरीर को एक हायर विल को इम्पोज करके आप शरीर की आयु बढ़ा सकते हो, ये किया गया है. लेकिन फिर भी अभी तक हमें कोई ऐसा विजिबल टैंजिबल नमूना नहीं है कि जिसने शरीर की मृत्यु को पूरी तरह जीत लिया. आई नो चिरंजीवीज का उदाहरण है, वो भी चिरंजीवीज हैं और वो एक अवेलेबल नहीं है, मतलब दे आर देयर इन सम सटल वर्ल्ड. तो यह जो है कि फिजिकल बॉडी, बॉडी की क्या डेस्टिनी है, और क्या यह संभव है कि यह शरीर भी अज्ञान से, अचित अंधकार से मुक्त हो जाए. अब ये प्रश्न उठता है कि क्या जरूरत है भाई, आप पहुंच जाइए, सचेत हो जाइए, मुक्त हो जाइए, भगवान के साथ निवास करिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसकी यह है कि वो इंडिविजुअल एक अचीवमेंट है, लेकिन वो इंडिविजुअल अचीवमेंट एक दिव्य समाज, एक दिव्य जीवन को नहीं ट्रांसलेट करेगा, में नहीं ट्रांसलेट करेगा. क्योंकि धरती पर जैसे ही आप रहेंगे तो कितना भी डेवलप्ड बीइंग हो वो इसके बैंडविड्थ में आकर के ऑपरेट करेगा, उस वो बीमार पड़ेगा. बीमार पड़ेगा तो होते हैं ना गुरुजी, योगी, दे ऑल फॉल सिक, चश्मा भी लगता है, सब लगता है उनके जीवन में. तो डिपेंडिंग अपॉन क्या जड़ी बूटी ले रहे हैं, ये दिस इज द हाउ इट ऑपरेट्स. तो मतलब आपके यहां पर इस मर्त्यलोक में सफरिंग रहेगी ही आधी व्याधि, पर आप इसके परे जाके इससे फ्री हो सकते हो. तो अब तक ये माना जाता था कि दैट इज द हाईएस्ट कंज्यूमेशन, कि ठीक है कोई बात नहीं है, ये तो पीड़ा रहेगी, पीड़ा हेल्प करती है मुझे भगवान को याद करने में, इस तरह से हम इसको जस्टिफाई करते थे. और उसके पीछे भी कर्मों का लॉ है. लेकिन इसके आगे का क्वेश्चन मां रेज कर रही है कि वाई शुड इट बी, क्योंकि अगर यदि सृष्टि भगवान से निकली है तो इवन फिजिकल बॉडी के अंदर क्यों रहनी चाहिए डीजेनरेशन की पॉसिबिलिटी. अब ये बहुत आगे की चीज है, लेकिन आप देखिए ये थॉट अब ह्यूमन चेतना के अंदर बस गया है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि पिछले आई थिंक 20-30 सालों में ये खासकर हो रहा है, ये रिसर्च हो रही है. और वही जो उस दिन की बात हो रही थी कि मृत्यु आवश्यक नहीं है, ये थॉट आ गया है. अब फिजिकल लेवल पर साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि ये टेलोमेरेस के कारण है, किस कारण है. ऑलमोस्ट 30-40 साल से प्रयास किए जा रहे हैं कि फिजिकल बॉडी को कंप्लीटली रोग से मुक्त हो और मृत्यु से मुक्त हो, ये संभव है क्या. तो अब ठीक है, सम पीपल में से कि व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, मैं मुक्त हो जाऊं. लेकिन अगर ये संभावना धरती पर एस्टेब्लिश हो गई, जैसे मेडिसिन का ही उदाहरण दे रहा हूं, पहले क्या होगा, कुछ लोगों में आपने ट्राई किया कि क्या संभव है कि हम मृत्यु से एस्केप करें और क्या संभव है कि कोई रोगी ना हो. अब आपने कुछ लोगों में ये सैंपल प्रयास किया, अब क्या होता है उससे, क्या ये कुछ लोगों तक सीमित रहेगा? ये संक्रमण के द्वारा लार्ज सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी में फैल जाएगा. तो जीवन कैसा होगा धरती पर? आप सोचो कि धरती पर किसी को रोग ना हो, कोई मृत्यु को ना जाए, कोई से मतलब एक पर्टिकुलर विशेष जो तैयार है. तो अब ये जो संभावना आएगी वो धरती के जीवन को बिल्कुल चेंज कर देगा, क्योंकि आप हर प्रकार के दुख और शोक से मुक्त हो गए हो, इंक्लूडिंग द फिजिकल बीइंग, शरीर की जड़ता के पास से. तो ये संभावना अपने आप में अनोखी लगती है, काल्पनिक लगती है, लेकिन सच तो ये है कि ये संभावना अगर है नहीं तो धरती का जीवन तो हमेशा कष्ट रहेगा. और जैसे जैसे ऐसे बीइंग्स आएंगे जो इस संभावना को अपने जीवन में फलित करेंगे, वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली दूसरों में ये फैलेगी, चाहे उन्होंने योग किया हो ना किया हो, ये इंटरेस्टिंग बात है, चाहे उन्होंने तपस्या की हो या ना की हो. ठीक वैसे जैसे मनुष्य का मन विकसित हुआ तो बहुत लोगों में मन की और डेवलपमेंट फैली. अभी आज के बच्चों को देख लीजिए, कई मामलों में दे आर वेरी फास्ट देन आवर जनरेशन. तो क्यों? क्योंकि वो संक्रमण से कोई चीज अगर धरती पर स्थापित होती है तो सब में फैलती है. तो अब ये व्यक्ति के ऊपर है कि वो उस अभिप्सा को अपने अंदर आत्मसात किए है कि नहीं किए है. पर्सनली मुझे वो सॉल्यूशन बहुत कंप्लीट लगता है. तो इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं कि जिनको मुक्ति का पथ चुनना है वो चुन सकते हैं, ये नहीं कि निषेध है इस योग में. लेकिन यदि आप सच में आपके अंदर एस्पिरेशन है, इसीलिए इस योग को कहा गया हीरोइक सोल्स, क्योंकि ये जो पथ है जिसमें आप इस संभावना को अल्टीमेटली एक्टिवेट करेंगे. माँ ने तो कह दिया है कि ये होगा, लेकिन वो एक प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है. मुक्ति वाला पाथ ये नहीं कि ईजी है, लेकिन कम से कम लगता है कि ठीक है, हम एक दो जन्म में तो पा ही लेंगे, हमारे कन्हैया मिल जाएंगे, हम चले जाएंगे उनके साथ. तो वो इंडिविजुअल उपलब्धि है. तो उस सेंस में हमारे शास्त्रों में इसकी बात नहीं है. चेंज द लॉ एंड गोइंग बियॉन्ड द लॉ. तो ऐसे योगी रहे हैं जो बियॉन्ड द लॉ रहे हैं, जो काफ़ी लंबे आयु तक उन्होंने समहाउ शरीर को मेंटेन करके रखा, या पैसेज होने के बाद किसी शांग्रीला में या कोई ज्ञानगंज में उन्होंने सूक्ष्म देह में वो रह रहे हैं, ये संभावना है. परंतु वो इस पृथ्वी की नियति को अस्वीकार कर देते हैं. पृथ्वी की नियति क्या है? वो जड़ता, अचित, अज्ञान, अंधकार, और उस पर जो भी जीव पृथ्वी की देह से बने हैं, पृथ्वी की मैटर से बने हैं, उनकी नियति एक ही है. सो इन दैट सेंस इट इज ए कंप्लीट कंज्यूमेशन ऑफ अर्थली लाइफ, जो वेदांत दर्शन में नहीं है. मतलब प्रयास है, जैसे मैंने कहा श्री कृष्ण जीवन मुक्ति की बात करते हैं, पासिंगली मेंशन भी करते हैं, जिस श्लोक को लोग दूसरे ढंग से भी देते हैं, यू कैन टेक इट बोथ वे, कि जरा मरण, जो बड़े योगी होते हैं वो जरा मरण के पार जाते हैं, और जरा जरा इज ओल्ड एज, और श्री कृष्ण की मृत्यु इज वेरी सिम्बॉलिक. जरा नाम के व्याध से उनको तीर लगता है, मतलब ही स्टिल ससेप्टेबल, हालांकि वो डिवाइन है, ही स्टिल ससेप्टेबल टू डेथ बाई ओल्ड एज. तो ये दोज पीपल हु आर कॉल्ड टू डू इट विल कंटिन्यू टू डू इट. माने उनको हीरोइक सोल्स का है, क्योंकि वो कठिन कार्य है. पर ये अंतर है, मूल रूप से ये अंतर है. जो इवोल्यूशन है वेदांत में, इवोल्यूशन वो सोल का इवोल्यूशन है ट्रांसमाइग्रेशन के थ्रू, और साइंस में फिजिकल इवोल्यूशन की बात की है. अगर फिजिकल इवोल्यूशन नहीं होता है तो आपकी जो ह्यूमन कैपेसिटीज है वो लिमिटेड रहेंगी. आप मुक्त हो जाओगे आफ्टर डेथ, बट योर ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, लाइफ एनर्जी वो लिमिटेड रहेगी, मिक्स्ड रहेगी. तो इसलिए कुछ योगी ये तरीका अपनाते हैं कि वो जीवन से कट करके जीने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नेचर में हम आएंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम यही है. श्री कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं अंदर से त्रिगुणातीत भव सव्यसाची, पर ये कहते हैं जब तू एक्ट करेगा तो सत्व रजस तम गुण से ही एक्ट करेगा. तो मतलब एक इनर परफेक्शन विद आउटर इम्परफेक्शन, अल्टीमेटली बात ये हुई कि जो देही है वो तो ल्यूमिनस स्प्लेंडर सब कुछ है, लेकिन जो शरीर है, जो उसका घर है, तो इसको अगर ऐसे देखें तो हमारे और उस इस जो दिव्यता अंदर है और ये जो शरीर है, इन दोनों के बीच में बहुत मिसमैच है. बुक 1 Canto 5, तो वी कैन रीड दैट फ्यू लाइन्स की ये क्या एस्पिरेशन है जो श्री अरविंद प्लांट की है उन्होंने अर्थ पे, जो आज तक नहीं हुई है, तो उस सेंस में. और इसीलिए उन्होंने हर किसी को इस योग में जो पहले दिन बात हुई, क्योंकि ये हर किसी के अंदर ये कॉल होती भी नहीं है, क्योंकि मुक्ति एक एस्टेब्लिश हो गई है ना, तो एक रीजनेबल ऑप्शन लगता है कि हाँ लोग हैं जो मुक्त हुए हैं और हम भी चलेंगे थोड़ा पथ. ये नहीं कि आसान है मुक्त होना, लेकिन ये लगता है कि चलो इट इज स्टिल. बुक 1 Canto 5, आई विल फाइंड द रेस्ट. इसमें निकाल दो ये तो. हाँ अमृत इनर, उसकी अमृत की बात है, अमृत तत्व को प्राप्त कर लेना. यानी 3 अमृत तत्व हैं जो हमारे उपनिषदों और वेदों में कहे गए हैं. तो एक अमृत तत्व है जब चेतना आपकी फाइनाइट घेरे को तोड़ के इन्फिनिट से चली जाती है. तो वो अमृत तत्व इसलिए है क्योंकि मृत्यु केवल फाइनाइट पर अपना अधिकार रख सकती है. इन्फिनिट तो बाई नेचर कैन नॉट डाई. तो सीमित चेतना क्योंकि सीमाबद्ध है, मृत्यु क्या करती है, उस सीमा को तोड़ती है. तो वो तोड़ती है तो वो लिबरेट कर रही है आपको. वास्तव में देखा जाए यही वो भी कह रहा है कि मैं तो तुम्हें सीमाओं से लिबरेट कर रहा हूं, लेकिन वो तो लिबरेशन क्या है, आपका सिस्टम ही खत्म हो गया. इट्स लाइक सेइंग मैं तुम्हारा घर तोड़ रहा हूं तो मैं मुक्त कर रहा हूं घर के बंधन से और घर के पास से, तो मुक्ति नहीं हुई. तो ये एक मुक्ति है जहां कॉन्शियसली योग के द्वारा व्यक्ति अनंत की चेतना में प्रवेश करता है. ये तो है, ये तो ईश उपनिषद में है. दूसरी मुक्ति है जब वो अपनी आत्म तत्व को प्राप्त करता है. सोल की कॉन्शियसनेस इमोर्टैलिटी की कॉन्शियसनेस है. कोई भी व्यक्ति अगर सोल को टच करता है तो वो जानता है कि डेथ डजंट एग्जिस्ट. वो बाई इट्स वेरी नेचर बिकम्स इमोर्टल. पर किसमें? आत्म तत्व में. पर फिजिकल इमोर्टैलिटी की बात नहीं है, कहीं पर भी नहीं है. प्रयास है, असुरों ने प्रयास किया था. देवासुर जो मंथन है उसमें देवताओं के लिए, देवता आर सेलेस्टियल बींग्स, दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स. और असुरों ने जितने भी प्रयास किए हैं, क्योंकि वो देहात्म बोध होता है उनके अंदर, तो उन्होंने जितने भी प्रयास किए एक भी प्रयास तो सफल नहीं होता है, क्योंकि उसकी कंडीशंस दे कैन नॉट फुलफिल. इवन ब्रह्मा जी कहते हैं कि आई कैन नॉट ग्रांट यू इमोर्टैलिटी. क्यों ही कैन नॉट ग्रांट? क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है. ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस कॉस्मिक चेतना में जो आया है वही दे सकते हैं. अब माने क्या किया है, ट्रांसेंडेंट में जो छिपी हुई थी ये संभावना उसको विश्व चेतना में ले आई है. तो अब जितने भी देवता हैं वो रीएडजस्ट करके, रिकैलिब्रेट करके, नाउ दिस संभावना हैज बीन एक्सेप्टेड. इसको ऐसे देखना चाहिए, नहीं तो वो संभावना अगर विश्व की चेतना में नहीं है तो उसको देवता भी नहीं दे सकते. यही ब्रह्मा जी भी कहते हैं ना कि मैं नहीं दे सकता हूं. आत्म तत्व की इमोर्टैलिटी की बात है पर फिजिकल इमोर्टैलिटी की बात नहीं है. तो यहां पर उसी चीज को श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से. अब बाकी चीजें तो दे आर ऑन द वे, ये नहीं कि आप उसको छोड़ के सीधा फिजिकल इमोर्टैलिटी पर प्राप्त कर सकते हो. ये तो है ही स्टेप्स, आपको अपनी सोल को ढूंढना, अनंतता में प्रवेश करना, जो बाकी योगों में ये चीजें हैं वो सब तो है ही इस योग में. ये नहीं है कि मैजिक सडनली. इसके साथ में टुवर्ड दी लेटर पार्ट जो सुबह हम लोग बात कर रहे थे, फिजिकल रूपांतरण की बात होती है. तो ये पढ़ के देन वी कैन गो टू नाउ राइटफुली ऑन फाइंडिंग ऑफ द सोल. तो अशुपति ने ये सारी सीढ़ी लांग ली है, सीक्रेट नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस. अगर हम अज्ञान में तो हमारे लिए कुछ भी अप्लाई नहीं करता है. अज्ञान में तो बस ठुकाई बजाई होती है और कुछ नहीं. वी आर ए स्लेव हु थिंक्स ही इज फ्री, दैट्स ऑल. तो यहां पर जब अशुपति ये सब रियलाइज करते हैं तो वो लास्ट की कुछ पंक्तियां उनकी विल के आगे वो क्या डिस्कवर करते हैं. He read the original UKs kept back in the locked archives of the spirit script. Original plan kya hai? Ye dharti kyon bani hai? Srishti kyon bani hai? And saw the signature and fiery seal of wisdom on the dim powers who did work. Agyan ke upar bhi wisdom ne seal di hui apni. Ki tayyar karo manushya ko for the greater truth. Who builds in ignorance the steps of light. A sleeping deity opened deathless eyes. He saw the unshaped thought in soulless forms. New matter pregnant with spiritual sense. He read from within the text of the without. The riddle grew plain and lost its catch obscure. ये riddle क्या है? ये riddle है ना कि भगवान और ये जीवन में कोई मेल नहीं है. प्लेन. अब हम कैसे भी समझा दें उसको. भगवान को बचाने के लिए हम कहते हैं हमारे कर्म, भगवान ने तो सृष्टि बड़ी सुंदर बनाई, मनुष्य ने उसको बिगाड़ा. अब क्वेश्चन तो लॉजिकल उठता है ना, मनुष्य को किसने बनाया? शेरविंद कहते हैं एज इफ मैन हैड ए बिग से इन क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स. मनुष्य को भी तो भगवान ने, मतलब अगर उस लॉजिक से देखें तो आप कैसे कह सकते हो कि मनुष्य ने सृष्टि बिगाड़ दी. मतलब वो एक ट्रूथ है, हर चीज का अपना एक ट्रूथ है, बट एक लिमिटेड पार्शियल ट्रूथ है. मतलब मनुष्य का अपना एक दायित्व है, पर मनुष्य को आप अल्टीमेट वो नहीं कह सकते हैं. सृष्टि में अज्ञान है, अचित है, अंधकार है, वो क्यों है? तो ये रिडिल है, ये संसार की बहुत बड़ी पजिल है कि एक और भगवान सच्चिदानंद है, ब्रह्म है, फिर संसार में हम क्या देखते हैं? पीड़ा देखते हैं, असत देखते हैं, फ्लीटिंग पर्सनैलिटीज देखते हैं, टेम्पररी ट्रांजिएंट बॉडीज देखते हैं. आनंद ने क्या रूप लिया है? सुख दुख और इंडिफरेंस का. आनंद तो ये रूप लेके घूम रहा है. चेतना अर्धचेतनता बन गई है. शक्ति ओमनीपोटेंस, बड़ी एक आधी अधूरी ऊर्जा. तो ये जो रिडिल है इसका क्या प्रयोजन है? क्या हमेशा ये दो पार्ट में रहेगी जिंदगी, आधे अधूरे रहेंगे? तो उसकी बात कर रहे हैं श्री अरविंद. द रिडल ग्रू प्लेन एंड लॉस्ट इट्स कैच ऑब्सक्योर. ए लार्जर लस्टर लिट द माइटी पेज. ग्रेटर लाइट सुपरमेंटल के प्रकाश में अब वो देख रहे हैं इस धरती की कहानी. ए पर्पस मिंगल्ड विद द विम्स ऑफ टाइम. अब देखिए यहां पे डेस्टिनी नहीं समझ आती ना, हम अंत में किस पर थोप देते हैं? कर्मों के ऊपर थोप देते हैं. पता नहीं कि किसने कब क्या कर्म किए. कायदे से तो आपके एक माइंड में फ्लैश होना चाहिए, कोई बोलना चाहिए, आवाज आनी चाहिए, गरजती कड़कती, तूने पूर्व जन्म में यह किया था इसलिए आज तू ये भोग रहा है. हालांकि ऐसा भगवान बड़ा अजीब भगवान होगा कि वो केवल दंड पुरस्कार देने में बिजी है. तो अब यहां पर वो बातें हो रही. ए पर्पस मिंगल्ड विद द विम्स ऑफ टाइम. ऐसा लगता है नियति में क्या हो गया, अच्छा भला सब कुछ चल रहा था जीवन, ये क्या हो गया, इसकी मैंने कल्पना ही नहीं की थी ये जीवन में हो गया. अब अगर इसको आप रियली किसी भी जीवन की घटना को अगर ध्यान से देखें कि उससे आपके इनर बीइंग और इनमोस्ट बीइंग में क्या चेंज आए हैं, तब वो रिडल सॉल्व होगी. हम क्या कर देते हैं, सीधा कर्मों पर, बाहर से कुछ शक्तियां हैं, कुछ होस्टाइल फोर्सेज हैं, कुछ देवी प्रकोप है, कुछ राहु केतु शनि, बेचारे वो अपनी जगह हैं, उनको घूमने दीजिए आराम से. So we don't understand this riddle. A larger luster lit the mighty. A meaning met the stumbling pace of chance. Supramental light में ये सब clear हो जाता है कि वो गिरा तो क्यों गिरा? क्यों गिरा? रास्ता कठिन लिया था. देखिए stumbling pace of chance. अब जो कहते हैं ना, वो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वो चार कदम जाके आ रहा था. क्या गिरेगा? तो आप देखिए मीनिंग चेंज हो गया ना, मतलब जितनी बड़ी आपकी कठिनाई हो रही है आपने उतनी बड़ी संभावना को अंगीकार किया है। ह्यूमिलेशन तो द्रौपदी और पांडवों का होता है, कौरवों का तो नहीं होता है। तो अब ये जो नई दृष्टि मिलती है उसमें आप पूरी कहानी को अलग ढंग से देखते हैं। स्टम्बलिंग पेस ऑफ चांस एंड फेट रिवील्ड ए चेन ऑफ सीइंग विल, वन लाइन इज एनफ टू अंडरस्टैंड फेट। हम क्यों फेट कहते हैं? क्योंकि हमको समझ नहीं आता कि जीवन में ये क्यों हुआ। अच्छी वाली गाड़ी, हमारा अच्छी वाली का मतलब है सुख चैन से हम सो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अगर आप इसको बहुत क्रूड लैंग्वेज बोले, आई वॉज एंजॉइंग लाइफ, तो ये स्पॉइल स्पोर्ट क्यों आ गया? क्योंकि आप बंधे हुए थे बुरी तरह एज ए स्लेव, लेकिन आपको वेकअप कॉल आई, कम कम, नहीं सुना तो शेकअप कॉल आई, नहीं सुना तो ब्रेकअप कॉल आई, अर्थ को एक जल जला, यही है जीवन। तो अब वो नहीं सुनना भी एक प्रोसेस है इंसिडेंटली। तो स्टम्बलिंग पेस ऑफ चांस, ऑल सीइंग विल, वो करके रहेगी जो उसको करना। अब आप उसको, इसलिए कई बार मैं कहता हूं पीपल जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट, कि आपके लाइफ में कोई असाध्य कठिनाई आई है आप उतनी प्रबल तीव्रता से भगवान की ओर मुड़िए, क्योंकि वो प्रयोजन उसका ये है। आप देखिए वो कैसे आपके जीवन से निकलती चली जाएगी, आप कैसे उसको पार कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखो सामने दोनों बच्चे सिर हिला रहे हैं, दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट, ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड इट। हम क्या करते हैं, उसे उलझ जाते हैं, भगवान को गालियां दे रहे हैं या हमारे कर्मों का हिसाब किताब एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट टर्न विद ए ग्रेटर, इंक्रीज द एस्पिरेशन। इफ अभीप्सा नहीं है तो मांगो भगवान से मुझे अभीप्सा दो, ऐसे कृत्य करोगी जिससे अभीप्सा जगे, लाइक रीडिंग मदर एंड शिरबिंदो। एंड फेट रिवील्ड ए चेन ऑफ सीइंग विल, ए कॉन्शियस वाइडनेस फिल्ड द ओल्ड डम्ब स्पेस, इन द वॉइड ही सॉ थ्रोन्ड द ओमनीसियंस सुप्रीम। तो अब पहले तो वॉइड, नथिंगनेस, अब उसमें भगवान सुप्रीम विद्यमान है और उनकी कोई विल है, जिस विल इज हिज पावर। अब क्या होता है, ये एस्पिरेशन जो है ये श्री अरविंद के योग की एस्पिरेशन है। ए विल, ए होप इमेंस नाउ सीज्ड हिज हार्ट, एंड टू डिसर्न द सुपर ह्यूमन्स फॉर्म ही रेज्ड हिज आईज टू अनसीन स्पिरिचुअल हाइट्स, एस्पायरिंग टू ब्रिंग डाउन ए ग्रेटर वर्ल्ड। अब देखिए कौन पागल रहा होगा जिसने कल्पना की थी कि एक दिन हम उड़ेंगे आसमान में। रीसेंट टाइम्स में तो दा विंची, आज से कितने साल, आई थिंक 300-400 ईयर्स बैक, ही एक्चुअली ड्रू डायग्राम्स ऑफ ए फ्लाइंग मशीन। लोग कहते हैं ये पागल है, मोटर कार तो बनी नहीं है, ये कहते हैं हवा हवाई। पर आप देखिए कुछ ऐसे लोगों के कारण जब जहाज बन गया तो कोई पूछ नहीं रहा कि भाई तुमने कल्पना की थी नहीं की थी, नहीं आप चलो टिकट लो और चढ़ो। तो कुछ ये योग में यही है कि लोग कहते हैं कि श्री अरविंद के योग में हाउ वी आर हेल्पिंग ह्यूमैनिटी, दिस इज द वे। कुछ लोग अपना सर्वस्व होम करने कर रहे हैं जिससे कि धरती पर बाकी सबके लिए एक सुविधा उपलब्ध हो। पागलपन है तो है तो ये है। सुपर ह्यूमन्स फॉर्म, ही रेज्ड हिज आईज टू अनसीन स्पिरिचुअल हाइट्स, The glory he had glimpsed must be his home. A brighter, heavenlier sun must soon illume this dusk room with its dark internal stair. ये क्या है, lower vital वृत्तियां जिसके ऊपर आप चढ़ के बैठते हो, ये शरीर। यहां तक श्री रामकृष्ण परमहंस और बुद्धिज्म में कई लोग कहते हैं कि यू शुड मेडिटेट ऑन द कॉप्स। बुद्ध की तो एक राइटिंग में है, पूरा धम्म पद का एक पूरा सेक्शन है कि आप शरीर को एक मृत समझ के, श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं मांस मज्जा इस पर मेडिटेट करो शरीर के ऊपर, तो इससे आसक्ति छूट जाएगी। अब सोचिए आप, अजीब लगता है बेचारा शरीर जिसके अंदर आप साधना कर सकते हो, ये भी साथ में कि यू कैनॉट डू योगा विदाउट द बॉडी, ये भी कहते हैं आप बॉडी के अंदर साधना कर रहे हो, उसके अंदर उसको क्या कह रहे हो आप कि मांस मज्जा और भी बोलते हैं अनस्पीकेबल वर्ड्स, वेस्ट, गंदगी। ये तरीका यूज किया जाता है मेडिटेशन का कि आपको डिटैचमेंट हो इससे, लेकिन ये विल है कुछ और है। ये देखिए, द इन्फेंट सोल इन इट्स स्मॉल नर्सरी स्कूल मिड ऑब्जेक्ट्स मेंट फॉर ए लेसन हार्डली लर्नड आउटग्रो इट्स अर्ली ग्रामर ऑफ इंटेलेक्ट एंड इट्स इमिटेशन ऑफ अर्थ नेचर्स आर्ट इट्स अर्थली डायलेक्ट टू गॉड लैंग्वेज चेंज इन लिविंग सिंबल्स स्टडी रियालिटी एंड लर्न द लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट द आइडियल मस्ट बी नेचर्स कॉमन ट्रूथ द बॉडी इल्यूमिंड विद द इन ड्वेलिंग गॉड द हार्ट एंड माइंड फील वन विद ऑल दैट इज ए कॉन्शियस सोल लिव इन ए कॉन्शियस वर्ल्ड। अब देखिए क्या अभिप्सा है, द आइडियल मस्ट बी नेचर्स कॉमन ट्रूथ। एक कॉमन सी चीज, किसी से अगर पूछा जाए, जनरली मैं कहता हूं दो प्रकार के लोग हैं जो भगवान विश्वास करते नहीं करते हैं, एक बड़ी क्रूड उसमें। अब जो विश्वास करते हैं उनसे आप पूछिए कि आपने तुमने भगवान को देखा, 99.9% को विश्वास है, कुछ इधर उधर ग्लिम्स हुए होंगे, भगवान को नहीं देखा। लेकिन वो बोलते हैं कि भगवान ही सर्वशक्तिमान है और भगवान ही एकमात्र सत्य है। तो कभी प्रश्न ही उठता, जो एकमात्र सत्य है उसको ना हम देख पाते हैं, ना भावना से महसूस कर पाते हैं। इसी पर तो वो सूफी सेंट ने लिखा है, तू एक गोरख धंधा है, तू है भी नहीं भी, तू ही एकमात्र है लेकिन तू कहीं नहीं दिखता। तो उसके लोग बड़े वो दे देते हैं कि फॉर्मलेस है, ठीक है, यह हमारी आंखों की सीमा है। तो ये तो चीज है, क्योंकि फॉर्मलेस है लेकिन उसका फॉर्म भी है, वो अपना फॉर्म में अपने को प्रकट कर सकता है, सारी सृष्टि में वो प्रकट कर रहा है। तो यहां पर कि क्यों ऐसा नहीं होता कि यदि यदि मतलब मैं एक लॉजिकल उसमें बोल रहा हूं कि भगवान ही सत्य है, तो बच्चे को जन्म से ये होना चाहिए। जैसे हम श्वास लेते हैं तो बच्चा जन्म से क्यों नहीं देखता मुस्कुराता, और अगर पूछें पेरेंट्स की बेटा क्या हो गया मुस्कुरा, अरे भगवान दिख रहे हैं, आए हम मुझे दूध पिला के चले गए, होना तो यही चाहिए। क्यों होना चाहिए कि नहीं चाहिए, होता नहीं है। आइडियल मस्ट बी कॉमन ट्रूथ। क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पॉजिटिव थिंकिंग करो, भगवान है विश्वास रखो, ये सब क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो अभी हमारा एक इनर बीइंग में कहीं पर विश्वास की भूमि पर वो ट्रुथ है, लेकिन वो हमारे जीवन में उतरा हुआ प्रकट होता हुआ और हमारे शरीर की चेतना में जब हम घुस जाएं तो कहीं नहीं वो दिखता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो PhD का क्वेश्चन है जो श्री अरविंद ले रहे हैं, कोई तो लेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर के बिना ये हमको रिडिल ऑफ द वर्ल्ड रिडिल रह जाएगी। मार्ग इंडिविजुअल मुक्ति का मिल सकता है लेकिन रिडिल ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए अगर आप किसी को बोलें कि इस प्रश्न के बारे में, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो या तो वो कहेंगे वहां जाके सब पता चल जाता है, या वही जो स्टैंडर्ड आंसर है, नहीं ये संसार तो ऐसे ही रहेगा, पीड़ा दुख तो इसीलिए है ताकि एक दिन आप भगवान को याद करो, और अब नॉट कन्विंस्ड। अगर भगवान परफेक्ट है तो ये संसार भी परफेक्ट होना चाहिए, मनुष्य भी परफेक्ट होना चाहिए। लॉजिकली ठीक है ना, कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है लॉजिक में। श्री अरविंद भी यही कहते हैं कि यस, और अब वो समय आ गया है इस अभी दबी हुई अभिप्सा को ऑपरेट करने का, क्योंकि अब तक ये थी नहीं संभावना। ये हमने उस दिन पढ़ा था, तो ये उसी को एक दूसरे ढंग से उन्होंने बताया है। तो सायुज्य मुक्ति, बीइंग वन विद गॉड, अब ये शब्द भारतीय संस्कृति के हैं, लेकिन कौन सा सायुज्य है? आपकी सोल सतत भगवान के साथ एक हो गई, आपका शरीर भी भगवान के साथ एक हो गया, ये बात तो नहीं प्रकट हुई है कभी। बॉडी ऑल्सो मस्ट बिकम वन विद गॉड, मतलब उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो डिवाइन के अंदर है। डिवाइन के अंदर क्या है? अच्युतम केशवम अक्षितम, ये ना डिवाइन के अंदर। बॉडी ये तो वैसे ही गिरा हुआ है, इसको तो अच्युत का एक स्पर्श नहीं मालूम। अक्षितम नहीं, डिजेनरेट करता है। तो वो सब कुछ जो डिवाइन के साथ हम जोड़ते हैं, प्रकाश ज्योतिर्ब्रह्म, शरीर तो ऐसा है कि कोई भी लाइट यहां टकरा करके शैडो ही कास्ट करती है, दैट इज ट्रू। तो वो डिवाइन क्वालिटी, सायुज्य का मतलब होगा शरीर भी वही चीजें जो डिवाइन चेतना के अंदर है, वही चीजें शरीर के अंदर भी अभिव्यक्त हो नेचुरली स्पॉन्टेनियसली, कालांतर में होगी। मतलब शेरविंद ने बहुत बड़ा बात कही है कि होगी, पर होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। उसी प्रकार से सालोक्य, सालोक्य क्या है कि जो ट्रेडिशनल योग में है कि वैकुंठ लोक में, जैसे वैष्णवों का है वैकुंठ लोक में या कृष्ण के लोक में, आप अगर भक्ति करते हैं तो मृत्यु के बाद आप उसमें निवास करेंगे। क्यों भाई, यहां क्यों नहीं? इफ कृष्णा इज एवरीवेयर, आई मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ हिम एवरीवेयर। सालोक्य, सामीप्य, नियरनेस ऑफ द डिवाइन। और साधर्म्य, साधर्म्य में क्या है कि योर नेचर बिकम्स सेम एज द डिवाइन नेचर। अब ट्रेडिशनल योग में ये जो वर्ड आता है वो मेनली सोल अपने जो डिवाइन विल है उसको वो जानती है और उसको एक्सप्रेस करती है, लेकिन उस किस दायरे में करती है, त्रिगुणात्मक प्रकृति के। अगर आपका शरीर भी, मन, प्राण, हृदय, सब कुछ उसी मोल्ड में हो गए, उस स्पंदन को वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सुबह इसी की बात हो रही थी रूपांतरण की कठिनाइयां, तो वो हो जाएगी साधर्म गति। आपके हृदय में अनंत प्रेम है लेकिन शरीर नहीं उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है, हृदय नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है। आपका मन खुला हुआ है उस असीम प्रकाश के प्रति, लेकिन जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो सेंटेंस नहीं निकल रहे हैं, पैरालाइज्ड बाय टू मच ऑफ लाइट। होना तो ऐसा नहीं चाहिए, अपने आप चैनल्स बनते जाने चाहिए और ल्यूमिनस प्रकाश शुड फ्लो। कविता है शेरविन की, रूपांतरण उसमें यही है कि मेरी एक एक नर्व्स बन गई हैं आपका चैनल और उसके थ्रू फ्लो कर रहा है आपका प्रकाश आनंद। तो ये है इसमें, ये चारों शब्द श्री अरविंद ने ट्रेडिशनल योग से उठाए, लेकिन ट्रेडिशनल योग में यूनियन ऑफ द सोल विद द डिवाइन ये है। और उसमें वो लोग क्वालिफाई नहीं करते बिकॉज इट इज अंडरस्टूड। जब वो कहते हैं भगवान से एक हो गए, मिलन हो गया, तो वो थोड़ी वर्ड वो है ही नहीं, वो अंडरस्टूड है कि आपकी सोल का मिलन हो गया, फिर ये शरीर को हमने छोड़ दिया, चोला था ये, दैट्स हाउ इट इज अंडरस्टूड। लेकिन श्री अरविंद के योग में केवल सोल की यूनियन डिवाइन के साथ काफी नहीं है, आपके माइंड की यूनियन डिवाइन के साथ, मतलब मन पूरी तरह प्रकाशयुक्त मन बन जाए, आपके हृदय की यूनियन डिवाइन के साथ, मतलब हृदय पूरी तरह दिव्य प्रेम और दिव्य माधुर्य का वेसल बन जाए, लाइफ की यूनियन डिवाइन के साथ, मतलब आपकी आपके आपकी जो जीवन की ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है, वो पूरी तरह भगवान की ल्यूमिनस फोर्स उनकी शक्ति के साथ एक हो जाए, यानी कुछ भी असंभव नहीं उसके लिए। और आपका शरीर जो है भगवान के परम सौंदर्य के साथ और परम हारमोनी को अभिव्यक्त करे इवन फिजिकली, तो ये मतलब होल बींग बिकम्स वन विद द डिवाइन इन इट्स एक्सप्रेशन। हाँ बोलिए मदन गोपाल। पहले वो कहते हैं ना कि लेट द किंगडम, नहीं नहीं सही है, करते कई लोग क्वेश्चन सुप्रामेंटल के बाद क्या होगा। यस नहीं ठीक है, नहीं इट्स ए वैलिड क्वेश्चन, कई लोग पूछते हैं, ये वैलिड क्वेश्चन है कि अब इसके बाद क्या होगा। तो ये हाँ, टालने वाला तो आंसर ये होता है कि अरे पहले अभी हजार साल आने दो, पर मूल चीज पहले हमको ये समझना है कि सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ कि अभी तक इवोल्यूशन जा वहीं रहा है अंत में, अगर हम देखें इस प्रोसेस को, जा वहीं रहा है, वही अनफोल्डिंग, और उसमें पूरे अगर बैकग्राउंड में देखें कैसे चेतना का विस्तार हो रहा है, ये तो हम देख रहे हैं। चेतना के विस्तार होने से नई संभावनाएं भौतिक देह में प्रकट हो रही हैं। अब देखिए बंदरों को रिमोट नहीं हैंडल कर सकते हैं बेचारे, हम लोग कर सकते हैं, अब सेलफोन हम हैंडल कर सकते हैं, बंदर नहीं कर सकते हैं, बने ही नहीं, वो संभावना नहीं है उसके अंदर। तो ये जो मनुष्य के अंदर जो फॉर्म आया, उस फॉर्म के साथ कई चीजें जो चेतना में वो अभिव्यक्त करने के योग्य हुई। अब यहां तक अनकॉन्शियसली विदाउट कंसेंट ऑफ द एनिमल या प्लांट, प्रकृति ने मैन तक ले आई है। क्या कंसेंट जरूरी है? नॉट रियली नेसेसरी, बट नेचर अपनी प्रोसेस को हेसन करने के लिए उसने मैन को उस भूमि पर लाके खड़ा कर दिया है जहां वो कोलैबोरेट कर सकता है। यही अंतर है। अब दैट मींस कि जैसे ही सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन में व्यक्ति प्रवेश करेगा, तो अब तक जो अनकॉन्शियस इवोल्यूशन है, जिसके कारण पीड़ा के, कष्ट के द्वारा, मार कुटाई के द्वारा, सुख दुख के द्वारा धीरे धीरे हुई है प्रोसेस, अब वो एक कॉन्शियस हैप्पी जॉयस प्रोसेस हो जाएगी। पहले तो ये मूल चीज समझ नहीं है। तो फिर जब ये जॉयस हैप्पी कॉन्शियस फ्रीडम में प्रोसेस हो जाएगी, ल्यूमिनस हो जाएगी, तो उसके आगे, हाँ उसके आगे होगा, लेकिन अब उसके आगे जो होगा वो ऐसे है कि आप स्वयं कॉन्शियसली उस चीज को प्रकट करें, मतलब यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ पेनफुल। इसीलिए शेरविन कहते हैं कि सुप्रामेंटल के आगे जो है उसको वास्तव में आगे कहना, ऊपर कहना, ये उचित नहीं है, क्योंकि सुप्रामेंटल ही इन्फिनिट है। पर इन्फिनिट में उसके आगे, जैसे अब आनंदमय देह बनेगा, अगर हम देह की बात करें, तो सुप्रामेंटल बॉडी के आगे क्या होगा? इट विल बी द बॉडी ऑफ ब्लिस। यहां तक तो पंचकोशों की बात हुई है, हो सकता है शुद्ध सत बॉडी, एनीथिंग, और इवन इन द सेम बॉडी मेनी न्यू पॉसिबिलिटीज जिनकी हम अभी कल्पना नहीं कर सकते। पर वो रुकेगा नहीं, पर वो अब कॉन्शियस हैप्पी वंडरफुल प्रोसेस हो जाएगी, एफर्टलेस। यस, लीला का मतलब यही होता है, यस, लीला ऑफ इवोल्यूशन, यस, इट इज इटर्नल। ओनली प्रॉब्लम है इसकी, ये एक बहुत सुंदर थॉट है और उसको हम विश्वास के आधार पर मान के चल सकते हैं कि ये लीला हो रही है, भाई भगवान की लीला है, बहुत बड़ा संबल है। परंतु उसी तरह का कि ये माया है, तो हम उसमें उलझे हुए हैं, हमको बाहर निकलना है। तो अंत में लीला में क्या हमारा कोई पार्टिसिपेशन है, लीला कहाँ जा रही है, इसका कोई लॉजिक है? यहाँ पर श्री अरविंद उस लीला का डिटेल अनावृत कर रहे हैं। क्यों? मैनकाइंड इज रेडी नाउ टू अंडरस्टैंड एंड रिवील इट। एक समय था जब लीला तो हो ही रही थी, मनुष्य के आने के पहले भी हो रही थी, कोई नई चीज तो है नहीं, लेकिन जो जीव जंतु थे वो तैयार नहीं थे उसको समझने के लिए, कॉन्शियसली पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अब भगवान चाहते हैं और प्रकृति चाहती है कि इस लीला में ये जो क्रीचर है ये कॉन्शियसली पार्टिसिपेट करे। तो लीला तो है ही है, पर हम उसमें कॉन्शियसली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो हम पर डिपेंड नहीं करती है। ये मास ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, माने कहा नथिंग। डज योर वर्क डिपेंड ऑन अस, मदर सेज नो, वेरी क्लियरली सी सेड नो। तो फिर हम क्यों पार्टिसिपेट करें? फॉर द जॉय। देखिए आपके अंदर चेंज आ रहा है लेकिन आपको खुद नहीं पता है क्या है, कहाँ है, तो वो जो एस्पिरेशन से क्या होता है, दिस इज द जॉय ऑफ पार्टिसिपेटिंग, तो हम उससे वंचित हो जाएंगे। यही बात उस दिन सुप्रामेंटल शिप की हो रही थी कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्टिसिपेशन में यही अंतर है। हाँ बोलिए।
हम लोग का इस शरीर का मतलब ये फिजिकल बॉडी, ये हृदय जो फिजिकल का जो मतलब ये जो इस जगत का जो प्रेम ये पकड़े जाता है, तो डायरेक्टली हम अगर उधर चले जाएंगे तो हमको तो माँ डायरेक्टली उठा के उधर दे देंगे, हमको इतना प्रोसेस में जाने का क्या?
तो डायरेक्टली जाना तो बहुत बड़ी ग्रेस है, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम पूरा शेष निशेष अपने शरीर मन प्राण को पूरा प्रोसेस, तो केवल समझने के लिए कि कैसे होगा, लेकिन अपने आप को शेष निशेष शरीर मन प्राण को पूरी तरह माँ को दे देना, एग्रीड, नो अदर साधना इज नीडेड आफ्टर दैट। लेकिन नहीं नहीं ये अगर भाव, ये भाव भी है ना दादा, ये भाव है ना, आप उठा के हमको दे दो, हमने दे दिया माता जी से एक जगह। इसके पीछे कई बार एक इनर्शिया छिपा होता है। श्री अरविंद ने इसके बारे में कॉन्शियस किया है हम सबको कि सरेंडर कैनॉट बी ए तामसिक सरेंडर, कि हमने माँ को बोल दिया। कैसे देते हैं हम? माँ को बोलते हैं कि हमने आपको दे दिया, दैट इज नॉट एनफ। और हम पूरे जीवन ऐसे कर सकते हैं बट नथिंग विल हैपन। और माँ ने ये बात स्पष्ट की है, शेरविंद ने भी स्पष्ट की है, कॉन्शियस प्रोसेस इज ए कॉन्शियस प्रोसेस. और शेरविंद कहते हैं अनकॉन्शियस सरेंडर ब्रिंग्स नथिंग. तो ये चीज हमको समझनी है. अब मैंने कह दिया कि मैंने अपने आप को माँ को दे दिया, और अच्छा है जब तक सब अच्छा चल रहा है. एक फोन आया, अरे तुम्हारे बड़े परिचित हैं, उसके जीवन में ये घटना घट गई, उस समय हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? ये तो बहुत अच्छा है अगर माँ की इच्छा हो. भगवान ना करे कोई अपना अगर बहुत प्रिय होता है, इतना शीघ्रता से हम नहीं बोल पाते हैं कि माँ की इच्छा है. अगर बोल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर हमारे शरीर में कुछ होता है, इट इज़ वेरी गुड, आई एम हैप्पी. लेकिन एक नॉर्मली ये चीज़ नहीं होती है. जब हमारे जीवन में कई सारी चीज़ें कठिनाई आती हैं, हम लोगों से पूछते हैं उसका क्या सोल्यूशन है, क्या प्रॉब्लम है, इसका कोई सोल्यूशन है क्या. बहुत लोग हैं जो मेरे से स्वयं संपर्क में आते हैं, जो कहते हैं हमने सरेंडर कर दिया, देन दे आस्क मी कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन है. तो सरेंडर तो हुआ नहीं ना. सरेंडर तो फिर सरेंडर होता है कि ये तो इवन जो सेंट्स हुए हैं उनके लिए कठिन हुआ है. वो तो जब सब अच्छा चलता है ये माँ की इच्छा है. तो मैं तो वो शब्द ही नहीं बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई अपना, मान लीजिए अपने बच्चे को कोई सीवियर कष्ट होता है, इतनी सहजता से माँ की इच्छाएं नहीं निकलता है. निकलता भी है तो आंसुओं के साथ निकलता है, और वो आंसू खून के आंसू होते हैं, है कि नहीं. तो फिर वो इच्छा आपने बोल दिया, लेकिन वो तो इच्छा है कि भाई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है. हाँ, वो तो एक मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं है. ग्लैड सरेंडर, हैप्पी सरेंडर, कॉन्शियस सरेंडर, विलिंग सरेंडर, ये एक अलग चीज है. एग्जैक्टली वो समर्पण नहीं है, वो समर्पण नहीं है. वो आपने, वो एक हेल्पलेस व्यक्ति का समर्पण है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है. तो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उसमें और कॉन्शियस समर्पण में बहुत डिफरेंस है. अब देखिए आपको बता, हृदय का समर्पण क्या है, कि मैं केवल मेरा सारा प्रेम माँ के से जुड़ा हो, या जितने भी लोग हैं उनके साथ माँ के माध्यम से जुड़ा हो, यानी उनके अंदर में माँ के किसी ना किसी रूप को देख पाऊँ. तो अगर कोई जिसको आप प्रेम करते हैं, बहुत से लोग होंगे, तो वो अगर आपको कुछ क्रिटिसाइज करें या गाली गलौज करें, हो सकता है नहीं हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारी क्या प्रतिक्रिया रहती है? हम उनको प्रेम करते जाते हैं? ये बहुत सिंसेरिटी इतनी रेयर चीज है. ये समझना कि हम सिंसियर हैं सरेंडर में, ये बहुत बड़ी भूल होती है. मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जनरल कर रहा हूं कि उस समय हमारे अंदर बहुत पीड़ा होती है. जिसको हमने इतना प्रेम किया वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है. नहीं नहीं, हमको प्रेम करना है, माँ की इच्छा है, उसने मुझे इंसल्ट किया, गाली दी, मुझे उसके अंदर केवल डिवाइन मदर को देखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. और अगर हम कर सकते हैं तो हैट्स ऑफ, दैट्स ऑल. लेकिन इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि हो गया. माँ ने स्वयं इस पर कहा है कि किसी ने कहा माँ से, माँ आज कोई और टॉपिक लीजिए, सरेंडर तो लास्ट वीक आपने किया था, मैंने कर दिया. मदर हैज स्पोकन अबाउट दैट कि माँ मैं अपना सब कुछ आपको दे रहा हूं, बस दैट द एंड ऑफ द स्टोरी. नो, इट इज नॉट इवन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. क्योंकि आपने कितने सत्यनिष्ठा से ये कहा है, पहले तो वो इंपॉर्टेंट है, बाद में जो कहानी होगी तो बाद की कहानी होगी. वही तो होता है इक्वानिमिटी टेस्ट जो होते हैं योग में, यही तो होते हैं कि आप सच में आपने दिया है, माँ मेरी डेस्टिनी आपके हाथ में है, आपके जीवन में सब उल्टा हो गया, ठीक है, अच्छा है, जॉयसली आप मुझे सही रास्ते से ले जा रहे हैं. तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमारे जीवन में सब अच्छा होता है तब हम इस बात को बहुत सरलता से कह लेते हैं. माँ ने प्रोवाइड कर दिया, मनी भी है, एक पोस्ट भी मिल गया, सब तो हम बड़े आराम रहता है. लेकिन जीवन हमेशा तो ऐसा नहीं होता है. जीवन में वही जो हम पढ़ रहते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, और कई बार जब ज़्यादा बड़ी संभावना होती है, ज़्यादा बड़ी समस्याएं आती हैं, उस समय ये चीज़ बहुत कठिन होती है. हमको बहुत सिंसियरली अपने आप को देखना चाहिए, हर किसी के लिए. और सच है कि अगर सिंसियर सरेंडर हो गया है माँ से, एक बार किसी ने, इसका एक प्रमाण होता है कि हम कैसे जाने कि सिंसियर सरेंडर हो गया है कि नहीं. अगर सिंसियर इंटीग्रल सरेंडर हो गया है तो यू विल बी ट्रांसफॉर्म बीइंग. ये शेरविंद ने कहा हुआ है कि अगर somebody asked him like this, अगर हम इंटीग्रली सिंसियर सरेंडर माँ को कर दें तो क्या यह सच नहीं है कि वो इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है? शेरविन ने कहा यस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ. हम ट्रांसफॉर्म नहीं है, मतलब सिंसेरिटी अभाव है. माँ की इच्छा तो वही है, माँ की इच्छा किसी को पीड़ा देने की नहीं है. माँ की इच्छा तो फिर रूपांतरित कर देंगी, लेकिन बहुत हम तो कॉन्शियस ही नहीं है. इसको एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कोई आया मेरे पास कि मुझे सेलफोन चाहिए, मैंने उठा के दे दिया. फिर आया वो आपके पॉकेट में है, वो सेलफोन चाहिए. अब देखिए डिफरेंस हो गया ना, जिस चीज का हमको पता भी नहीं है हमारे अंदर है, हमने उसको कैसे दिया. हमारे अंदर बहुत कुछ है जिसको हम कॉन्शियस भी नहीं है, उसके ऊपर सचेत होना ही. यानी आई कैन गिव समथिंग विच आई एम अवेयर ऑफ कि मेरे अंदर है. अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर मैं कॉन्शियस ही नहीं हूं कि मेरे पास क्या है और मैंने कहा दे दिया, मतलब पड़ोसी का घर आप ले लो माँ, तो इट डजेंट मेक सेंस. तो इसीलिए इंडिविजुअलिटी पहले फॉर्म होनी पड़ती है. माँ कहती है बिफोर सरेंडर यू हैव टू फॉर्म ए कॉन्शियस इंडिविजुअलिटी कि आपके पास ये है. स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात एक अलग ढंग से बोली थी एक यंग व्यक्ति को. वो आया बोला कि मैं सब रिनाउंस करना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा तेरे पास है क्या जो तू रिनाउंस करना चाहता है? जाके पहले 1,00,000 रुपया कमा, फिर वो तू मुझे दे दे. अभी आई कैन आस्क अनदर थिंग, आई मीन डोंट माइंड दैट वे, इट्स नॉट पर्सनल. मैंने सब माँ को दे दिया, पैसा दे दिया सारा माँ को. अब सोचिए माँ अगर कभी ऐसे पूछ लें तो हमारी क्या हालत होगी? दे दिया ना हमने, जीवन माँ को दे दिया. क्या हम जीवन की एक एक सांस केवल उनकी सेवा में लगा रहे हैं? नहीं ना. मैंने विचार माँ को दे दिए, माइंड. क्या हम हर समय केवल और केवल माँ के बारे में सोचते हैं? नहीं. मैंने अपनी भावनाएं माँ को दे दी, क्या मेरे अंदर केवल और केवल माँ से ही प्रेम है और सबसे प्रेम जो है वो माँ को ही केंद्र में रख के प्रेम है? नहीं. तो फिर कैसे होगा? धन है उसको हम अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि बट टू से दैट दिस इज सरेंडर दैट वी शुड बी केयरफुल. तो धन तो हमको फिर हमारे पास तो सारा का सारा इमीडिएटली वी शुड डू ए बैंक ट्रांसफर और यूज इट ओनली फॉर डिवाइन मदर्स पर्पस, नॉट इवन बाई ए शर्ट और पैंट फॉर अवर सेल्फ. ऑनेस्टली इट शुड बी लाइक दैट. क्योंकि फिर माँ को की इच्छा, तो अगर माँ देंगी आज का खाना और एक शर्ट हमारे लिए, तो हम उसमें खुश रहेंगे. 10 देंगी तो 10 लेकर के हम उसको जैसे जैसे यूज करना है, और नहीं देंगी तो हम उसमें प्रसन्न रहेंगे. सरेंडर इज नॉट सो सिंपल, इट मीन्स कंप्लीट ओबीडियंस टू द डिवाइन विल. जो आप कह रहे हैं वो एक प्रकार की भावनात्मक भक्ति है और वो अच्छी चीज है, ये नहीं कि बुरी है, लेकिन दैट्स नॉट एनफ फॉर दिस योगा. ये हमको पता होना चाहिए. हमको देखना चाहिए कि नहीं पैसा है तो मैं तो अपने लिए खर्च कर रहा हूं, बहुत तरह की चीजों के लिए, अपना शौक के लिए भी, ठाट के लिए भी. तो देन मतलब दिस देयर इन अस, सो वी शुड सी इट एंड देन कीप ऑन ऑफरिंग टू अस हर की माँ ये मेरे अंदर जो वृत्ति है इसको आप हटाओ, ये अज्ञान से जुड़ी हुई वृत्ति है. माँ मेरे विचार कई बार आपके तरफ नहीं होते हैं, कहीं और चले जाते हैं. खाने में रस लेने लगता हूं, बहुत कठिन है. सरेंडर पूरे लाइफ टाइम की साधना है. हाँ आप क्या कह रहे Absolutely, it is the
soul gets transferred to another human being. Would that human being have the absolutely same characteristics, or it will be decided by the new physical environment?
Ha, but the soul will not be transferred to another human being like that. It will be, it will die. Whether the body will die, then it will take a new human body. So yes, I get your question, but पहले तो सोल और स्पिरिट दो अलग चीज़ें हैं, बट वी विल नॉट गो इन टू दैट बिकॉज वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है. प्रश्न है कि इंडिविजुअल सोल का क्या हमारे कैरेक्टर पे इन्फ्लुएंस होता है? निस्संदेह इन्फ्लुएंस होता है. अगर सोल पूरी तरह अभी अज्ञान में है तो हमारा कैरेक्टर बीस्ट जैसा होगा, और हो सकता है राक्षस असुर जैसा भी हो. सोल है लेकिन वो एक चिंगारी है, और जब वो फ्लेम के रूप में बढ़ती है, एक इमेज के रूप में देख रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत प्रकाश उन्मुख होते हैं हम लोग. और जब वो फायर बन जाती है तो केवल हम नहीं, आसपास भी वो फायर लाइट और शक्ति वो रेडिएट करने लगती है, और जब वो सोल डेवलप करके सूर्य के साथ एक हो जाती है तो आप सोचिए कैसा प्रचंड ताप होगा अंदर। तो यस, उसी के अनुसार हमारा कैरेक्टर होगा। कुछ चीजें हैं जो हम अंधेरे में कर पाते हैं लेकिन रोशनी में नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही जैसे जैसे सोल का आत्म प्रकाश बढ़ता है, कुछ चीजें हमारे लिए असंभव होने लगती हैं। और अगर वो वृत्ति के अनुसार, नेचर की वृत्ति से आ भी रही हैं, तो अपने आप उसके बाद हमें अंदर से लगता है कि ये चीज उचित नहीं है, ये सुंदर नहीं है। एक सोल की जो डिमांड होती है, ट्रूथ, गुड एंड ब्यूटी। मान लीजिए आप किसी पर डांट दिए गुस्से में, आपने हो गया वीकनेस एक आ गई, तो जिसकी डेवलप्ड सोल होगी ना, वो खुद ही कहेगा कि ये उचित नहीं है, या तो सॉरी बोलेगा या अपने अंदर उसको स्वीकार करेगा। और जिसकी डेवलप्ड सोल नहीं है वो क्या कहेगा, ऐसा तुमने काम किया था ना, गुस्सा तो मुझे आएगा ही, नेचुरल है, तुम चेंज करो, मुझे गुस्सा आना बंद हो जाएगा। ये अंतर होगा। तो कैरेक्टर पे अंतर पड़ा, और ऐसा सभी चीजों के साथ है, यहां तक कि उसकी वाणी, उसके जेस्चर सब रिफाइंड हो सकते हैं। अब रही बात बाहर की पर्सनालिटी, क्योंकि पर्सनालिटी हमारी दो लेयर में होती है, एक है सरफेस पर्सनालिटी और दूसरी होती इनर बीइंग। मैंने अभी इनर बीइंग की बात करी। बाहर की पर्सनालिटी में दो फैक्टर होते हैं, एक तो इनर बीइंग शेप करता है, लेकिन हेरिडिटी का एक बहुत स्ट्रांग एलिमेंट होता है, छाप होती है, वो हमेशा सोल के कंट्रोल में नहीं होती है, क्योंकि अभी सोल्स को एक ह्यूमन बर्थ के प्रोसेस से आना है। तो वो क्या करती है, बेस्ट ऑप्शन चुन लिया, ये मेरे माता पिता, पर माता पिता तो परफेक्ट नहीं है, तो कई चीज़ें वो हेरिडिटी से अपने अंदर लेगी और उसकी छाप पड़ती है। और कई बार लोग इसको नहीं देख पाते, पर डिवाइन ये डिफरेंस जानते हैं कि ये इसके अंदर हेरिडिटी से है, लेकिन ये इसके, इसका जो रियल इनर बीइंग है वो अलग है, और इसकी जो सोल है इतनी दैदीप्यमान है। तो ये तीनों लेवल पे, तो जब वो नया बॉडी लेगी, अब ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो उस जो प्रोग्रेस है उसको कैरी करती है, ये नहीं कि फिर से काम करेगी, जो आपने एक लाइफ में कर लिया। इसीलिए जो साइकिक बीइंग है, इसके तीन लेयर्स हैं जिस पर वो एग्जिस्ट करता है। एक है इनमोस्ट, इनमोस्ट कोर में क्या है, सोल है। उसके बाद इसका आता है ट्रू वाइटल, ट्रू मेंटल, ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल, उसकी पर्सनालिटी है, साइकिक पर्सनालिटी, एंड दैट विल बिकम द सुपरमेंटल बीइंग। उसमें आई हैव नॉट गॉन, बिकॉज वो सोल अपने अंदर से पुट फोर्थ करती है, और वो जिस सोल ने इंडिविजुअलाइज करके इतना डेवलप कर गई है कि उसका अपना एक एग्जिस्टेंस हो गया है। ट्रू मेंटल, ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल अगर डेवलप्ड है तो सोल मृत्यु के बाद भी पूरी तरह कॉन्शियस है और एक्ट करती है वर्ल्ड के ऊपर। इट्स अप टू इट, वो दोबारा आए नहीं आए, कब आए, कैसे आए, पूरी तरह कॉन्शियस हो गई है। और फिर उसकी एक बाहरी रूपरेखा भी होती है। ये तीनों लेवल्स पे सोल का अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन ज्यादातर लोग में वो केवल एक भ्रूण अवस्था में, जैसे एक एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियो का तो क्या हाथ और क्या पांव, और क्या उसके थॉट्स और क्या उसकी फीलिंग्स। तो ज्यादातर लोग में वो प्रकृति के अंधकार, अज्ञान के अंदर पूरी तरह दबी हुई है, जिसको कहा गया मृत्यु के तले वो जी रही है। तो दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच इट इवॉल्व्स। यस, इट इज इवॉल्व, बट सरफेस पर्सनैलिटी हैज टू कम इन कॉन्टैक्ट विद इट। तो इवॉल्व साइकिक बींग का आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि अगर आप ऑलरेडी साइकिक बींग इवॉल्व है, तो हु इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द साइकिक बींग। सो अब यह है कि अगर आपका साइकिक बींग ऑलरेडी इवॉल्व है, लेट्स टेक टू कंडीशन, एक है जहां वो बिल्कुल इवॉल्व नहीं है, दूसरा है वो इवॉल्व हो रहा है, तीसरा वो फुल्ली इवॉल्व है, मतलब डेवलप्ड साइकिक बींग है। डेवलप्ड साइकिक बींग है तो वो आपको बहुत जल्दी आपके मन, प्राण, हृदय, शरीर सब पर इन्फ्लुएंस करेगा। वो टर्न करना क्या है, वो आपके थॉट्स को उठा करके अपनी ओर खींचेगा। यू विल बिगिन टू थिंक वेरी अर्ली अबाउट द डिवाइन एंड यू नो सम ऑफ द यंगस्टर्स वाज सिटिंग हियर। उसी प्रकार से जब आपका एक डेवलप्ड साइकिक बीइंग है, हृदय के अंदर वो ऐसे भाव भरेगा, तो वो बिकॉज इट विल बिगिन टू इन्फ्लुएंस नेचर। पर फिर भी बाहर की पर्सनैलिटी जो है वो तो फिर भी जकड़ में है इग्नोरेंस की। तो डिस्कवर करने के लिए ये मतलब है कि अभी हम बाहर से आइडेंटिफाइड हैं, उसको हम दिस इज मी समझ रहे हैं, तो वहां से निकल के हमको चेतना को अंदर जाके हमारी चेतना को वहां से आइडेंटिफाई होके वी हैव टू टेक दैट एज अवर स्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस. अब इसका डिफरेंस ऐसे कि जब हम अज्ञान में होते हैं तो अगर गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि भैया मेरे नेचर में मैं तो गुस्सैल हूं, कर लो क्या करना है. जब आप साइकिक बीइंग को जान जाते हैं भीतर जाके, तब आप उस गुस्से से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तब कहते हैं कि मैं तो माँ का शिशु हूं, गुस्सा आता है कभी कभी. जस्ट एज एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग, बट यू आर नेवर आइडेंटिफाइड विद इट. वो मूवमेंट आ भी रहा है, जा भी रहा है, फिर आप उसको चेंज होने का उस पर दबाव डालते हैं. सो दैट इज हाउ इट ऑपरेट्स. तो फाइंडिंग द साइकिक बीइंग का मतलब है कि आपकी जो सरफेस पर्सनालिटी है, सावित्री की जो यात्रा वैसे ही शुरू होती है सरफेस पर्सनालिटी से, वो अंदर 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 जाते हुए, वो तो उलझी हुई है बाहरी चेतना में, जैसे हम सब सुख दुख को भोग रही है. हस्बैंड की डेथ होने वाली है, वो कह रही है काश मुझे कुछ और दिन इसके साथ रहने को मिल जाए. यही अवस्था है ना, मानवीय अवस्था, क्योंकि हम सब सरफेस पर्सनालिटी में लॉक्ड है. अंदर में सुंदर पकवान बन रहा है लेकिन हमको मालूम नहीं है. हम उस व्यक्ति की तरह हैं जो अंदर में बहुत धनवान है लेकिन बाहर हम कटोरा लेके कह रहे हैं भैया हमको कुछ थोड़ी भीख दे दो, खुशी की थोड़ी, हमको सुख की भीख दे दो, थोड़ा प्यार दे दो. ये हमारी अवस्था है. तो जब वो अंदर जाती हैं, जाते 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 जब सोल से कॉन्टैक्ट आ जाता है तो उसका प्रभाव हमारे चेतना पर क्या होता है. आई वॉन्ट टू रीड दिस, क्योंकि हम तब से ये हाथ में है. So there is the experience of the soul, और सारे देवी देवता अंदर में शी डिस्कवर्स. वो हैं, ऊपर भी हैं, रिफ्लेक्टेड है हमारी सोल में. शी फेल्ट हर सेल्फ मेड वन विद ऑल शी सॉ, ए सील्ड आइडेंटिटी विद इन हर वोक. शी न्यू हर सेल्फ द बिलवेड ऑफ द सुप्रीम. दीज गॉड्स एंड गॉडेसेस वेयर ही एंड शी. द मदर वॉज शी ऑफ ब्यूटी एंड डिलाइट. The word in Brahma's vast creating clasp, the world Pusa on almighty Shiva's lap, and Radha and Krishna and Radha forever entwined in bliss. Then she discovers her soul. अब वहां पे सावित्री का फिर क्या चेंज आता है हमारे अंदर, ये इंपॉर्टेंट है जानना. If you have discovered your soul, आपके नेचर के अंदर क्या चेंजेस आएंगे. तो इसको लोग कुंडलिनी के एक्सपीरियंस से जोड़ते हैं. Yes, it is true. इट इज एन एक्सपीरियंस. लेकिन यहाँ कुंडलिनी ऊपर से नीचे खुलती है, नॉट फ्रॉम बिलो अपवर्ड. एंड वॉट आर द चेंजेस दैट कम. सो बहुत पावरफुल डिस्क्रिप्शन है वो कुंडलिनी के जागरण का, बट उसको हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ देंगे. एंड वील जस्ट रीड दिस पार्ट. ओके, दिस विल टेक अबाउट 5 मिनट्स. वील रीड इट. Effacing the circles of the ignorance, powers and divinities burst flaming forth. Each part of the being trembling with delight lay overwhelmed with tides of happiness and saw her hand in every circumstance. तब यह है कि हर चीज में आप देख रहे हो. In the country and felt her touch in every limb and cell. In the country of the lotus of the head, which thinking mind has made its busy space. In the castle of the lotus twixt the brows, whence it shoots the arrows of its sight and will. In the passage of the lotus of the throat, where speech must rise, and the expressing mind, and the heart's impulse ran towards word and act, a glad uplift and a new working came. वो क्या working है वो बताएंगे. The immortal's thoughts displaced our bounded view. One's step solution. Find the soul, you don't have to think how to get positive thoughts. You will get immortal thoughts. Not just negative thoughts will be impossible. वो हो गई नहीं, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से गायब हो गया, इरेज हो गई वो फाइल. आपको सब कुछ नष्ट हो रहा है, डूब रहा है, वहां पर आप बोलोगे वही है, तेरी तलवार के नीचे में नचियां करके थैया थैया. Then you will actually live that truth. तो यहां पे the immortal's thoughts, earth's drab idea and sense, अर्थ के जो नॉर्मल अर्थली बींग्स के जो थॉट प्रोसेस हैं और आइडियाज हैं, ड्रैब, देखा जाए तो वेरी बोरिंग, पर लोगों को रस आता है उसमें, वो खत्म हो जाएंगे अपने आप. ऑल थिंग्स नाउ बोर ए डीपर हेवनलियर सेंस. क्या हेवनलियर सेंस? हर चीज में भगवान का हाथ, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ये लीला, ये सब के प्रति हम कॉन्शियस हो जाएंगे. ए ग्लैड क्लियर हार्मनी मार्क देयर ट्रूथ्स आउटलाइन, रीसेट द बैलेंस एंड मेजर्स ऑफ द वर्ल्ड. किसी को लग रहा था मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों हुआ, जिसकी सोल के साथ थॉट्स जुड़ गए हैं वो कहेगा अरे कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर, आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या कह रहा है, पर वो कृपा है. रीसेट द बैलेंस एंड मेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, ईच शेप शोड इट्स अकल्ट डिजाइन. इसका रिवर्स भी है, कोई कि अरे हमारी बहुत बड़ी प्रमोशन हो गई, खूब पैसे आ गए, हमारा ये हो गया, कहेगा क्या मूर्ख और गड्ढे के अंदर गिर रहा है. यू एक्चुअली सी इट बट यू कांट टेल इट, कि एम्बिशन के पीछे भाग रहा है, देखो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है. मेजर आपके चेंज हो जाते हैं. ईच शेप शोड इट्स अकल्ट डिजाइन, अनवेल्ड गॉड्स मीनिंग इन इट फॉर विच इट वॉज मेड एंड द विविड स्प्लेंडर ऑफ हिज आर्टिस्ट थॉट. ए चैनल ऑफ द माइटी मदर्स चॉइस, द इमॉर्टल्स विल टुक इन टू इट्स काम कंट्रोल अवर ब्लाइंड और अरिंग गवर्नमेंट ऑफ लाइफ. अब देखिए विल माँ की विल के साथ ट्यून में आ गई. अब जो आपके अंदर संकल्प जगेगा वास्तव में डिवाइन मदर की विल होगी, तब हम ये कह सकते हैं, नॉट बिफोर दैट, कि भाई मेरे अंदर जो भी विचार उठ रहे हैं, जो भी इच्छा हो रही है, सब माता जी करवा रही हैं, दैट्स डेंजरस. पर एक बार आप साइकिक बींग का इन्फ्लुएंस शुरू हो जाएगा तब ये प्रारंभ होता है. ए लूज रिपब्लिक वंस ऑफ वांट्स एंड नीड्स, और आप कर नहीं पाएंगे अगर आप प्रयास करेंगे कुछ अपनी डिजायर्स के अनुसार से करने का, तो या तो आपकी जबरदस्त ठुगाई होगी, इट विल नॉट बी अलाउड. और यदि आप नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट द विल इनसाइड इज यू इज विच इज द मदर्स विल, यू विल फील पेन्ड बिकॉज यू नो कि दिस इज नॉट व्हाट हर विल इज. तो ये उस हद तक जाती है चीज. लाइफ नाउ ओबेड टू ए डिवाइनर रूल एंड एवरी एक्ट बिकेम एन एक्ट ऑफ गॉड. एवरी एक्ट, अब देखिए, इन द किंगडम ऑफ द लोटस ऑफ द हार्ट, लव चैंटिंग इट्स प्योर हाइमिनल हिम मेड लाइफ एंड बॉडी मिरर्स ऑफ सीक्रेट जॉय. आपकी सारी जो भावना अंदर में उठती है, नेगेटिव फीलिंग्स इम्पॉसिबल होगी, यानी हेटरेट, जेलसी, पॉजिटिवनेस और क्या क्या होता है, नेगेटिव फियर और जो भी होता है, ये आपके लिए क्रोध, ये सब जो भी है, ये आपके अंदर ये आ नहीं सकती हैं उसके बाद, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गया, वो पूरा सोल का आधिपत्य आ गया है. सोल विल नॉट अलाउ इट, ऑलवेज वांट्स ट्रूथ एंड गुड एंड ब्यूटी. ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम टू कंप्लीटली चेंज, बट वंस इट स्टार्ट्स, मेड लाइफ एंड बॉडी मिरर्स ऑफ सीक्रेट जॉय एंड ऑल द इमोशंस गेव देमसेल्व्स टू गॉड. माँ, मदर, फादर, फ्रेंड, प्लेमेट, बिलवेड, पैरामोर, मास्टर, गाइड, एवरीथिंग. इन द नेवल लोटस ब्रॉड इंपीरियल रेंज, इट्स प्राउड एम्बिशंस एंड इट्स मास्टर लस्ट. एम्बिशन का क्या होता है, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए. वेयर टेम्ड इन टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ए ग्रेट काम स्वे टू डू ए वर्क ऑफ गॉड ऑन अर्थली सॉइल. वो सब चेंज हो जाते हैं, द ओनली विल लेफ्ट इज टू सर्व द मदर. वो सारे एम्बिशंस दे आर टेम्ड. फिर ये होते ही नहीं है कि मैं, आप बायो, अपना बायो डेटा नहीं रखोगे, माने जबरदस्ती लोग पूछेंगे तो करोगे, आपका कोई विजिटिंग कार्ड नहीं रहेगा. ये एक सिंपल वन टेस्ट, क्योंकि आपको लगता है ये सही नहीं है. कोई बायो डेटा पूछेगा तो आपको देना पड़ेगा, वो इंट्रोडक्शन के लिए लोग फालतू की चीजें करते हैं, आपका फोटो और बायोडेटा, बट आपका वो उससे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लेना देना नहीं है. कोई बोलेगा तो आपको अजीब लगेगा कि अरे क्या बोल रहा है मेरे बारे में, मैं डॉक्टर हूँ, विंग कमांडर हूँ, ये लगेगा अरे कौन सा ये कोई सांप की केंचुल जो उतर गई नाम चिपका हुआ है, और लोग उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन ये उनकी समस्या है. इन द नैरो नेदर सेंटर्स पेटी पार्ट्स, इट्स चाइल्डिश गेम ऑफ डेली ड्वार्फ डिजायर्स. गोलगप्पे खाने, समोसा बनाए, ये डेली ड्वार्फ डिजायर्स, ये तो छोटी छोटी. वहां क्या होगा, was changed into a sweet and boisterous play, a romp of little gods with life and time. ऐसा नहीं है कि वो आप नहीं, I don't eat samosas. ऐसे अरे भगवान तो हर चीज का आनंद लेते हैं. If it is pakoras, we can have. But if there is no pakoda, it's okay. मौज है. डेली ड्वार्फ डिजायर्स. कोई नहीं, किसी ने आपको एक छोटा सा कोई गिफ्ट दिया, मे बी स्मॉल. ओ, ये नहीं कि आप उसको सीख कर रहे थे किसी से, पर दिया किसी ने, उसका एक्सप्रेशन उस चीज का अद्भुत है. वाह, इट इज सो ब्यूटिफुल. माँ को देखो कैसे करती थी. और लोगों को ये लगता था कि बस कुर्बान हो गई. किसी ने वो हैंकरचीफ दिया, माँ से कहा, माँ आप दिया है मैंने, आप यूज नहीं करती हैं. कहती इसको नया वाला यूज करूं. फिर वो कहती है, पता है वो पुराना वाला मुझे बहुत अच्छी सर्विस दी है इसने. अब सोचिए वो क्या कॉन्शियसनेस है. तो लिटिल गॉड्स, वो छोटे गॉड्स का प्ले, स्वीट एंड बॉयस्ट्रस प्ले, ए रॉम्प ऑफ लिटिल गॉड्स विद लाइफ एंड टाइम. इवन शोरबिंदो जब वो कहते हैं, इफ इट इज पंथ वा आई कैन ट्राई. In the deep place where once the serpent slept, there came a grip on matter giant powers for large utilities in life's little space. अब matters की powers क्या है? Matter आपको क्या देता है? ये रोटी कपड़ा मकान. तो आपके grip ऐसी हो जाएगी उसके ऊपर कि जो आपको जरूरत है वो आपके पास आ जाएगा. माँ एक जगह कहती हैं कि she did an experiment. कहती मैंने कहा, वो तो बुद्धिस्ट योग में adept थी. कहती मैं अपने लिए कुछ नहीं लूंगी. तो एक बार माँ के मन में एक भाव उठा कि शी नीडेड ए पेटीकोट. अब आप वो कहती इतने सारे आने, आई नीडेड वन, फाइव ऑफ देम केम नेक्स्ट डे फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस. मैटर की जो यूटिलिटीज, ये सारी जो जड़ तत्व की चीजें, वो भी आपके पास, दे विल कम सिंपली बिकॉज नाउ द सोल सिस्टम इज एक्टिव. लेकिन इस हिसाब से हम करेंगे तो नहीं होगा. अच्छा, ये थोड़ा फायदा है, बड़ा फायदा है डॉक्टर साहब, हम भी करें जरा, ये अच्छा है. सोल के बाद हमको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. हाँ, बाद पहले कोशिश तो करो. बड़े पापड़ मिलने होते जो पहुंचता है ना सोल तक, उसकी पहचान ही होती कि आंसू रो रो के सूख गए नैना मोरे, और पाँव में छाले होते हैं, दिखते नहीं है. हील भी हो जाते हैं उसमें है. जब सोल कहाँ है उसका वर्णन होता है तो क्या बताया जाता है सावित्री को, कि यू गो थ्रू द वर्ल्ड्स वाइंडिंग हाईवेज, कहाँ, टू द प्लेस ट्रॉड बाय फ्यू वुंडेड पिलग्रिम फीट. अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में छाला नहीं हुआ तो अभी आप मेन रो, अभी चढ़ना शुरू नहीं किया है चढ़ाई. वो सब फिर माँ का स्पर्श तो वो सब ऐसे हील होता है कि आपको पता ही नहीं चलता, आपको हंसी आती है. बट यू टू गो थ्रू इट. हम सब इससे गुजरते हैं. आई रिमेंबर वंस राइटिंग 35 पेजेस टू मदर, और हर पेज पे एक ड्रॉप जा रहा है. अभी सुनने में सिली लगता है, बट यस 35 पेज झर 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 झर, और भेज भी दिया टू द मदर श्री अरविंदो आश्रम पांडिचेरी. भेज दिया. अब क्या करे, पीड़ा जो भी है कारण, आदमी किसको कहे. अब देखने लगता है क्या मूर्खता सारी चीजें. तो रोना है तो भगवान के चरणों में रोइए, आपके एक एक आंसू को वो मोतियों में बदल देगा. और संसार के सामने रोएंगे तो वो क्या मोल देगा आपके आंसुओं का, आपका या तो मजाक उड़ाएगा या आपकी वल्नरेबिलिटीज को यूज करेगा. तो रोना है तो माँ के सामने रोइए, वो आपको परमानेंट क्योर दे देंगी. ये रोना मुश्किल हो जाएगा तो यहां पर. नहीं सच में, और बिकॉज यू बिगिन टू सी लाइफ इन अ वेरी डिफरेंट वे. ओके, बिहाइंड ऑल रेन्ड हर सॉवरेन डेथलेस सोल, कास्टिंग असाइड इट्स वेल ऑफ इग्नोरेंस, एलाइड टू गॉड्स एंड कॉस्मिक बींग्स एंड पावर्स इट बिल्ट द हार्मनी ऑफ इट्स ह्यूमन स्टेट. अब इस तरह का जो बीइंग है ना, वो देवासुर संग्राम में पार्टिसिपेट करता है, एलाइड टू द गॉड्स. जो देवता कार्य कर रहे हैं धरती के अंदर, वो उसमें जुड़ जाता है. सरेंडर्ड इन टू द ग्रेट वर्ल्ड मदर्स हैंड्स, देन द सरेंडर इज कंप्लीटेड. वंस वी डिस्कवर द सोल, देन वी आर ड्रिवन बाई मदर, देन ओनली वी कैन सरेंडर. श्री अरविंद से जब जेल के बाहर निकलते हैं तो वो बोलती हैं सिस्टर निवेदिता कि मैंने सुना है, मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि ये लोग आपको अरेस्ट करने वाले हैं, तो आप चले जाइए. तो कुछ क्षण मौन रह के श्री अरविंद सिस्टर निवेदिता को कहते हैं कि तुमसे ज़्यादा और कौन ये जानता है कि एक बार जब हम डिवाइन मदर को अपने को सरेंडर कर देते हैं तो बिना उनकी आज्ञा के कहाँ जा सकते हैं. तो उन्होंने कहा कि श्री अरविंद ये कहते हैं कि आई कैनॉट मूव टिल शी टेल्स मी टू मूव, बिकॉज आई हैव गिवन माई सेल्फ एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ द डिवाइन मदर. तो भगवान स्वयं उनको कहते गो टू चंदन नगर, क्योंकि ये लॉजिकल थिंकिंग से तो जाएंगे नहीं. तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि ही वेंट बिकॉज इट वॉज ए फ्रेंच टेरिटरी. मैंने कहा नहीं, ही डिड नॉट गो, डिवाइन मेड श्योर दैट ही गोज. लुक एट हिज सरेंडर. श्री अरविंद के सरेंडर ऑफ भक्ति इज अकल्पनीय, अकल्पनीय. ओनली शी ओबेड हर सोल सुप्रीम बिहेस्ट इन द एनिग्मा ऑफ द इनकॉन्शियस वर्ल्ड. अब वो थोड़ा सा उसका वर्णन करते हैं, वो भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ ही लें, कोई बात नहीं है, डोंट वरी अबाउट टाइम. ए लाइट कम्स डाउन इन टू द इग्नोरेंस, इट्स हैवी पेनफुल नॉट लूजन्स इट्स ग्रैस्प. द माइंड बिकम्स ए मास्टर्ड इंस्ट्रूमेंट एंड लाइफ ए यू एंड फिगर ऑफ द सोल. ऑल हैप्पीली ग्रोज टुवर्ड्स नॉलेज एंड टुवर्ड्स ब्लिस. A divine pusa then takes nature's place and pushes the movements of our body and mind. Possessor of our passionate hopes and dreams, the beloved depot of our thoughts and acts, she streams into us with her unbound force. Hamare sare hopes, dreams, sab ab unke paas. Aur divine mother kya karti hai? Unki shakti stream karti hai body mind ke andar. Into mortal limbs, the immortals' rapture and power. The rapture of the gods he bore. Aage, an inner law of beauty shapes our lives. Refined ho jati chitna. Ab crude cheezon ke saath associate nahi kar sakte apne aap ko. Isiliye to one step solution. Find the soul. Our words become the natural speech of truth. Jo aapne bola wo sach ho jata hai. Our words become the natural speech of truth, or truth he express karta unke through. Each thought is a ripple on a sea of light. Then sin and virtue leave the cosmic list. Kyunki aap dvand ke pare chale jate hain. They struggle no more in our delivered hearts. Our acts chime with God's simple natural good, or serve the rule of a supernal right. All moods unlovely, evil and untrue forsake their stations in fierce disarray. आप सोच नहीं सकते हो, भाव नहीं आ सकता किसी के अहित का. कोई कितना भी कुछ आपको कह दे, आपके अंदर अहित का बैड विल, उसका ऐसा हो जाए, मतलब अगर आप उसको सुनेंगे तो आपके अंदर से उस व्यक्ति के प्रति वो आएगा रोष की, ये ऐसा महसूस करता है किसी के लिए, किसी ने उसका कितना भी बुरा किया हो. It has happened once. Somebody was writing and I would communicate. He says, I've been cheated by this person. I gave money and refuses to give money. जो भी समझाना था समझा रहा हूँ. He says, मेरे मन में बहुत उसको कर्ज करने के भाव उठते हैं और मेरा मन करता है कि मैं उसको उसके जीवन में ये हो जाए वो हो जाए. I said, I am blocking your contact. वो बेचारा परेशान हो गया कि मैं वो बदमाश आदमी है उसके प्रति. तो उसने फिर रिक्वेस्ट किया. मैंने कहा देखो बैड विल तुम्हारे अंदर है तो फिर तुम किसी भी प्रकार के डिवाइन, तब तुम सॉर्ट आउट करो अपने अंदर से. देन थिंग्स डोंट गेट ऑपरेटेड एट दैट लेवल. यू हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल बैड विल. वो आएगी नहीं. एक्चुअली यू डोंट हैव टू गेट रिड ऑफ. व्हेन द सोल कम्स आउट, ये सारी चीज, ऑल मूड्स अनलवली, उसका ऐसा हो जाए, डिप्रेशन, फियर, ये सारे अनलवली मूड्स है ना, ईविल विकेड एक्ट्स, अनट्रू, वो सब चले जाते हैं, सिन और वर्चू भी चले जाते हैं. एंड हाइड देयर शेम इन द सबकॉन्शियस डस्क, रूपांतरित नहीं हुए पर छिप जाते हैं, निकलेंगे नहीं जब तक आपका आत्म तत्व सामने है. देन लिफ्ट्स द माइंड ए क्राई ऑफ विक्ट्री, ओ सोल माई सोल वी हैव क्रिएटेड हेवन. ये पहला मैरिज है हेवन और अर्थ का, फाइंडिंग द सोल. एंड उसके प्रभाव से हमारे प्रकृति के अंदर जो चक्र खुलते हैं और उन रूपांतरण होता है. विद इन वी हैव फाउंड द किंगडम हियर ऑफ गॉड, हिज फोर्ट्रेस बिल्ट इन ए लाउड इग्नोरेंट वर्ल्ड. अवर लाइफ इज एंट्रेंस्ड बिटवीन टू रिवर्स ऑफ लाइट, दिस इज द रिवर ऑफ लाइट अबव एंड द सोल, नाउ इट इज कनेक्टेड, सो देयर टू रिवर्स ऑफ लाइट, तो जीवन इज फ्लोइंग देयर. We have turned space into a gulf of peace and made the body a capital of bliss. What more, if more must still be done? In the slow process of the evolving spirit, in the brief state between a death and birth, a first perfection stage is reached at last. This is the first perfection, psychic transformation. Not just discovery of the soul, but the transformation in nature. Out of the wood and stone of a nature stuff, a temple is shaped where the high gods could live. Body becomes a temple where high gods can live. Even if the struggling world is left outside, one man's perfection still can save the world. ऐसे व्यक्ति का इस संसार में होना मात्र ही एक बहुत बड़ी मतलब भगवान के एक्शन के लिए, it is there. Just his such a being's presence. Because वो constantly इस body के माध्यम से धरती के अंदर higher divine forces को अपने आप, उसको कुछ करना नहीं है, दे विल ऑटोमेटिकली पोर अपॉन अर्थ. मानी कहा है कि हिज प्रेजेंस इट सेल्फ इज हेल्पफुल. देर इज वन ए न्यू प्रॉक्सिमिटी टू द स्काईज, ए फर्स्ट बिट ट्रॉथल ऑफ द अर्थ टू हेवन, बॉडी एंड द डिवाइन, अर्थ टू हेवन को लिंक कर देती है सोल. ए डीप कॉन्कॉर्डेट बिटवीन ट्रूथ एंड लाइफ, a camp of God is pitched in human time. Jai Maa.